Give that to Granny's thought on your, when you get him text you, just look, I'll take it with me, but it would give you so much.
Amen. God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning.
Yeah, aapka hai. माँ के लिए छोटी सी चीज इसे दे और आप उन्हें ठीक कर लें और फिर इस छोटे को धन्यवाद भाई नेविल प्रभु आपको आशीष दे सुप्रभात मित्रों आज सुबह फिर से आराधनालय में वापस आना सौभाग्य की बात है ताजा और अच्छा महसूस कर रहा हूँ परसों के दिन मैं यहाँ तक बोल भी नहीं पा रहा था मुझे एक छोटा सा सकारात्मक रोग हुआ था जो वहाँ फैल रहा था आप जानते हैं उनके गले में चला जाता है और उन्हें कर्कश बना देता है लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे उस स्थिति से छुटकारा दिया जिससे कि मैं आज सुबह आपसे बात कर सकूं। और हम खुश हैं कि एक अच्छा आराधनालय खचाखच भरा हुआ है और लोग खड़े हुए हैं मैं बस चाहता हूं कि हमारे पास कुछ सीटें होती और उन लोगों को दे पाते जो खड़े हुए हैं और वे हमारे पास होती तो हमें खुशी होती लेकिन मैं सोचता हूं कि सब कुछ ले लिया गया है मैं जानता हूं कि आप आकर और इन बच्चों के साथ वेदी पर नहीं बैठना चाहेंगे और इस तरह से अपनी पीठ को घुमाएं अब ये कुछ दिनों से है कि मैं इतिहास पर अध्ययन कर रहा था और मैंने सोचा कि हो सकता है आज सुबह प्रचार करने के बजाय मैं कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन पर शिक्षा को दे सकूं और अब हमें शायद थोड़ी देर हो जाएगी इसलिए मैं आप में से कुछ उन लोगों के साथ सीट को अदला बदली करेंगे जो खड़े हुए हैं या कुछ तो यह निश्चित रूप से अच्छा रहेगा यदि आप कर सकें यदि आप इसे कर सकें और उन्हें थोड़ा आराम दें और अब बहुत से मित्र मेरे मित्र आए उनमें से बहुत दूर से हैं वहाँ बहुत दूर से जॉर्जिया में ओहियो टेनेसी में बस अलग अलग स्थानों से इलिनॉइस मिसौरी मिशिगन वे वहाँ शिकागो से हैं इस तरह से बस एक छोटी सी आराधनालय की सभा के लिए ये मुझे ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही आभारी बना देता है और केवल इतना ही नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा ना ही उसके रुचि में लेकिन परमेश्वर के वचन की रुचि में उन लोगों में से हर एक जन बहुत ही करीब जो केवल आते ही नहीं लेकिन वे अपने दशमांश को अपने साथ लाते हैं ताकि इसे सहायता के लिए कलीसिया में डालें। अब ये तो केवल मित्र हैं जो कि निष्ठावान हैं। आप बस ऐसे लोगों को नहीं भूल सकते और फिर कभी कभी हो सकता है मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जो उनके टुकड़े टुकड़े कर दे लेकिन आप देखते हैं कि तब इसका क्या मायने रखता है आपके हृदय में आप इसे नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ है जो कहता है तुम्हें करना ही है देखो इसलिए आपको इसे करना ही होता है और उन्हें हर कहीं से आते हुए देखते हैं और प्रभु की सेवा करने का यत्न करते हैं और उस सेवकाई में विश्वास करते हुए जो प्रभु ने मुझे दी है और मुझ पर उसका सेवक होने का भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा तब पूरी सच्चाई के साथ मुझे वास्तव में वह सब करना ही है जो मैं जानता हूँ कि कैसे उन लोगों के प्राणों की देखरेख करूं ये जानते हुए कि वे यहाँ केवल दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं कार चलाकर बर्फीले पहाड़ों और पहाड़ियों पर को पार करके और वहाँ खचाखच भरी सड़कों में से होते हुए और उनके बच्चों को ठीक से खाना और नींद नहीं मिलती है और उनका सूटकेस कार के पीछे रखा हुआ होता है और आप जानते हैं ये कठिन है लेकिन बाइबल ने ऐसे लोगों के बारे में कहा इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय में यहाँ तक कि संसार उन लोगों के योग्य नहीं है मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह मेरे हृदय में मायने रखता है और बहुत से लोग यहाँ न्यू अल्बानी और लुइसविले से हैं और आसपास केंटकी से और विभिन्न स्थानों से जो ज्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी वे आने के लिए ईमानदार हैं बर्फ हिम किसी भी चीज में से होते हुए आते हैं ताकि यहाँ पहुँच जाएं। अब अगला रविवार क्रिसमस की पूर्व संध्या है और मैंने सोचा कि मैं मेरे पास कलीसिया के लिए एक क्रिसमस का संदेश था लेकिन मेरे मन में उन छोटे बच्चों के प्रति ऐसी भावना थी मुझे अवश्य ही कहना है यदि मैं यहाँ पर आता हूँ तो शायद छोटे छोटे बच्चे उनमें से बहुत से दूर दूर रहते हैं वे उनके क्रिसमस और इत्यादि से चूक जाएंगे तो यह उन छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार से कठिन होगा। लेकिन जाने से पहले अब हम मैं जानता हूं कि हम लोग यहाँ अपने बच्चों को सांता क्लॉज जैसे काल्पनिक बातों के बारे में नहीं सिखाते हैं। हम किसी को भी झूठ बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार की बातों से ये काल्पनिक कथाएं हैं जो उसके शिखर पर हैं। इस प्रकार की चीज जो क्रिसमस पर मसीह के स्थान को ले रही है और क्रिसमस ने खो दिया। क्रिसमस अब आराधना करना नहीं रह गया है, यह एक उत्सव हो गया है। शराब पीना, जुआ खेलना, शराब की दावत देना बस पागान या मूर्ति पूजा की हद तक चला गया है और ऐसा नहीं है। और मैं चाहता था, हो सकता है क्रिसमस के बाद मैं फिर से क्रिसमस पर बोलूंगा, आप देखना, जिससे कि ये छोटे बच्चे वंचित रह जाएं। लेकिन आप इस तरह से छोटे बच्चों को यह नहीं बता सकते। वे क्रिसमस की रात को छोटे बच्चों को क्रिसमस के उपहार और इस तरह की चीजों को लेते हुए देखते हैं, वे इसे नहीं समझते हैं। देखा, वे बहुत ही छोटे हैं और हमें उन्हें याद रखना होगा कि उनके पास बातें समान हैं। हमें खुद को नीचे लाना होगा कि उन छोटे बच्चों को याद दिलाएं कि वे खुद, क्या मैं भी इस पर बहुत जोर से बोल रहा हूं भाई, इस पर बहुत अधिक आवाज है, क्या आप मुझे ठीक वहाँ पीछे सुन सकते हैं, बहुत पीछे, रुकना, मैं इसके बहुत पास खड़ा हूँ, कौन सा माइक चल रहा है, ये दोनों, ये वाला और ये, मैं सोचता हूँ कि जो ये वाला है जो वहाँ ठीक है, यही अब ये कैसा है, क्या ये अच्छा है, अब ठीक है, अच्छा। अब छोटे बच्चों को समझना होगा, आप जानते हैं वे छोटे बच्चे हैं और हमें याद रखना होगा कि हम भी एक समय छोटे बच्चे थे। और मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे, वे बाहर निकलकर और पुराने देवदार की झाड़ी को कहीं से तो काट कर लाते थे और माँ कुछ मकई के दाने तोड़कर पेड़ के चारों ओर बांध देती थी। पेड़ पर लगभग यही सब कुछ लगा हुआ होता था, लेकिन वे छोटे पुराने फटे हुए मोजे वहाँ ऊपर लटके हुए होते थे जैसे, और ओह, और हो सकता है एक छोटी सी टॉफी की थैली और वे छोटी छोटी कड़क टॉफी और दो या तीन मेरे लिए और दो या तीन हम्पी के लिए और दो या तीन इसके लिए, बस टॉफी के छोटे छोटे टुकड़े, और हम इसे दिन भर रखते, उसे चूसते रहते, आप जानते हैं, और इसे एक छोटे से कागज के टुकड़े में लपेटकर और अपनी जेब में रख लेते। और यदि हमें एक पुरानी ढक्कन वाली पिस्तौल मिलती या एक छोटा सा फूंक कर बजाने के लिए भोपू, तो यह एक बहुत बढ़िया चीज थी, इसी में हम बहुत खुश हो जाते थे। आज निश्चय ही यह बिल्कुल भिन्न है। निर्जन लोगों के पास बहुत ही थोड़ा पैसा है और ऐसा इसलिए है कि वे अपने बच्चों के लिए और चीजें खरीद सकें, वे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, अच्छा जीवन जिएं, और कुल मिलाकर मैं सोचता हूं कि वे खुशहाल या बेहतर हैं। और आज वे वेतन की स्थिति के नीचे हैं और इसलिए छोटे बच्चों, आपको उन्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा सुनिश्चित रखें, उन्हें बताएं कि सांता क्लॉज जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह सही नहीं है। इन दिनों में से एक दिन वे आगे चलकर और कहेंगे, फिर यीशु के विषय में क्या है, देखा। इसलिए उन्हें सच बताओ, हरेक के साथ ईमानदार रहें, सच्चे बने, और विशेष रूप से आप अपने बच्चों को कुछ भी गलत नहीं बताएं, क्योंकि वे बड़े होकर और कहेंगे, वे एक मसीह के रूप में आप पर विश्वास करते हैं और वे चाहते हैं कि आप, वे विश्वास करते हैं कि जो आप उन्हें बताते हैं वो सत्य है। इसलिए निश्चित करें कि आप उन्हें सच्चाई को बताएं, तब यह सब ठीक हो जाएगा। अब और फिर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कम से कम एक रात, मेरा मतलब एक दिन और हो, यदि मैं कर सकता हूं आराधनालय के लिए, इससे पहले कि मैं अपने आने वाले वर्षों की सभा के लिए जाऊं, मेरा मतलब वर्ष की सभा के लिए। और यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो मैं इस वर्ष बाहर के देशों में बहुत सी सभाओं को लेने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा हूं, विशेष रूप से स्वीडन और नॉर्वे में और बहुत से स्कैंडिनेवियाई के देशों में और नीचे एशिया में। मैं महसूस करता हूं कि हमें इन बातों के विषय में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें अवश्य ही पवित्र आत्मा के मार्ग को सीखना चाहिए और जिस तरह से वो हमारी अगुवाई करे और वे चीजें जिसे हमें करना चाहिए। कलीसिया के आरंभिक इतिहास के अध्ययन में ब्रॉडबैंड और हेजलटाइन के और इस पर उनकी बहुत सी टिप्पणियां नीसियन फादर्स में है और बस कल ही मैंने संत मार्टिन के पूरे जीवन के साथ समाप्त किया, जिसे कैथोलिक कलीसिया ने संत घोषित करने से इनकार कर दिया, पर परमेश्वर ने ऐसा किया। सो वे उसके महान जीवन के विषय में और किस तरह से वही चिन्ह और चमत्कार ठीक उस मनुष्य के जीवन में से होते रहे, किस तरह से उसने दो मरे हुए लोगों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अज्ञात भाषा में बोला और दर्शन और इत्यादि को देखा, और क्या ही महान व्यक्ति था। लेकिन फिर भी उसकी सामर्थ का रहस्य परमेश्वर के सम्मुख नम्रता में था। और आज हम पाते हैं कि कलीसिया फिर भी उसकी सामर्थ की शिक्षा दे रही है और चिन्हों को सिखा रही है कि विश्वासी के पीछे जाते हैं, फिर भी हम उन्हें फूला हुआ देखते हैं, मैं बड़ा तुम छोटे, और यह आरंभिक कलीसिया की तरह नहीं है। आप देखते हैं वे नम्र थे और एक दूसरे के प्रति दयालु थे और मधुर समझदार थे, और यह आज बहुत ही भिन्न है। और मैं सोचता हूँ कि क्या इनमें से बहुत सी बातों ने हमें संदेश के वास्तविक मूल बातों से भटका तो नहीं दिया है, कि हम अपने आप को नम्र करना चाहते हैं, अपने आप को बनाए रखें। आप जितने अधिक नम्र हो सकते हैं, उतना ही अच्छी तरह परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। काल्पनिक कथाओं और इन सारी झूठी कहानी का अध्ययन करते हैं। क्रिसमस अपने आप में एक झूठी कहानी है, यह नहीं है। क्रिसमस के विषय में कुछ भी वास्तविक नहीं है। यहाँ तक बाइबल में क्रिसमस का उल्लेख भी नहीं किया गया था। उन्होंने कभी भी मसीह के जन्मदिन की आराधना नहीं की, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। यह एक रोमन कैथोलिक सिद्धांत है और ना ही एक मसीही शिक्षा। इसके लिए बाइबल में कहीं भी कोई वचन नहीं है, और बाइबल के बाद के पहले 100 वर्षों में देखो इसका कुछ भी नहीं। यह तो बस एक झूठी कहानी है। सांता क्लॉज व्यावसायिक है, हर एक चीज, सारी चीजें एक बड़े समूह में बदल गई हैं। यदि आप पीछे जाकर और इसके आरंभ का अध्ययन करें और अब आगे की ओर देखें, आप देखेंगे कि हम कहां पर थे। वहां कुछ भी नहीं बचा है। प्रभु के आगमन के अलावा कोई भी चीज सहायता नहीं कर सकती, ऐसा ही है। अब प्रभु के आगमन के अलावा कोई भी चीज हमें इस गड़बड़ी से बाहर निकलने में सहायता नहीं कर सकती। क्या ये वो छोटा सा बटन या स्विच है जो उन टेपों को नियंत्रित करता है? हो सकता है कि मैं इस पूरी चीज को काट छाट कर दूं, बस इसे बाहर न भेजूं, क्योंकि यह बहुत ही असभ्य है। लेकिन मैं कहता हूं, तो क्या अब टेप बनाए जा रहे हैं? इन टेपों को मत बेचना। देखो, ये टेप बिक्री के लिए नहीं है। इन टेपों को कलीसिया में से होते हुए आगे सुनने के लिए दिया जा सकता है या आदि आदि, लेकिन क्योंकि यह संसार के जैसे निश्चित रूप से गड़बड़ी को उत्पन्न करेगा, देखा, तो बस इसे रोके रखना जब तक हम इसे अलग तरह से सही नहीं कर लेते। अब इससे पहले कि हम संदेश के पास पहुँचे और हर कोई जितना हो सके उतना सोचने और शांत रहने का प्रयास करे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपना समय लेना चाहता हूँ, ताकि इसे हृदय में डालना चाहता हूँ, ताकि आप वास्तव में इसे देख सकें। अब आइए पहले, अब यदि सब कुछ रास्ते से हट गया है, तो मैं विश्वास करता हूँ यहाँ तक जी हाँ, वे स्त्रियाँ जो वहाँ बगल में खड़ी हुई हैं, वे यहाँ पर आ जाएं। यहाँ ऊपर आप बहनों के लिए कुछ स्थान है। जी हाँ, यहाँ एक ठीक यहाँ सामने है, यहाँ ठीक यहाँ पीछे एक कुर्सी है, यहाँ वेदी पर बच्चे हैं। यदि कोई उठना चाहता है और एक छोटा बालक और किसी को अपना स्थान देते हैं जो वयस्क खड़े हुए हैं, क्यों? यहाँ वेदी पर ठीक यहाँ पर बच्चों के लिए जगह है और वयस्कों के लिए वहाँ बैठने के लिए जगह हो सकती है। वे महिलाएं वहाँ खंभे के पीछे खड़ी थी। यदि आप यह यहाँ बहुत पीछे कोने में है, लेकिन यह वहाँ खड़े होकर अत्यंत थका देता है। यदि आप खड़े रहना चाहते हैं, यहाँ मंच पर कुछ जगह है। अब आप में से कुछ भाई जो यहाँ आना चाहते हैं, इन बच्चों के पास या एक भाई वे के पास बैठा हुआ है, अब ऊपर आ जाएं, ठीक यहाँ पर अपनी सीट को लें, ताकि हर कोई आप ठीक घर पर हो सकें। अनुभव करें कि आप अपने आप को ठीक घर जैसा महसूस करने को लगाएं। यहाँ ठीक यहाँ पर एक स्थान है भाई शेल्बी, यहाँ ठीक यहाँ मंच पर। यदि आप चाहें तो यहाँ आकर और हमारे पास आकर बैठें, ठीक यहाँ पर। और भाई इवांस और भाई चार्ली, और आप यहाँ, यहाँ ठीक यहाँ पर कुछ सीट है, और एक सीट ठीक यहाँ पर है, और दो ठीक यहाँ पर है। सीधे ऊपर आ जाएं भाई, वहाँ से बस सीधे ऊपर आ जाएं। अपने आप को सहज से रखें, जिससे कि हम कर सकें सभा को करने के लिए हर एक जन बस शांति पूर्वक रहे जितना संभव रूप से हम कर सकते हैं, जिससे कि आप थक कर और उबे नहीं और खड़े न रहें। आप में से कुछ भाई लोग पीछे, बहन वहाँ हॉल के पीछे की ओर, वहाँ पीछे हॉल में खड़े हुए हैं। आप अभी भी जगह है, या एक और जगह है, या एक पियानो स्टूल है जिस पर कोई तो उपयोग कर सकता है यदि वे आकर और उस पर बैठना चाहते हैं, यह ठीक रहेगा। मैं वहाँ पीछे एक महिला को देखता हूँ जो उसके बगल में एक खाली सीट को दिखा रही है, इसलिए तब ये ठीक है। बस अपने आप को उतना ही सहज महसूस कराएं जितना आप अब कर सकते हैं। और अब जबकि हम स्थित हो रहे हैं, आइए, ये लगभग 20 मिनट है, 10:23 इस दिसंबर के 17वें दिन पर, यहाँ आज सुबह जेफरसन मिल में बाहर बारिश हो रही है और हम बाहर से खराब लेकिन अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। अद्भुत, ये जानते हुए कि हम समीप आ रहे हैं, प्रभु का आगमन नजदीक है और अनंतता की ओर बढ़ रहे हैं, और हम परमेश्वर के बहुत ही धन्यवादित हैं कि हम इस प्रातः खड़े हो सके और विश्वासियों को और अविश्वासियों को जीवित परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, भरोसा करते हुए कि यह प्रभु की बातों को समझने के लिए हम सभी के लिए एक महान दिन होगा। अब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए झुकाएं, और जबकि हमने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, यदि कोई है जो चाहता है कि उसे याद किया जाए तो बस अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, आपके विनती को अपने हृदय में याद करें। धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा कि अब हम आराधनालय में हैं, सब बैठे हुए हैं और माइक्रोफोन चालू है और रिकॉर्डिंग को किया जा रहा है और मसीही लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनतियां याद करवाई जा रही हैं, और लगभग 2 या 3 सप्ताहों से मैंने आज के लिए इस संदेश पर निरंतर अध्ययन किया है। बस कुछ ही शब्द जो हो सकता है पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में विषय को अंदर डालने के लिए उपयोग करे, जिससे कि वे समय को देख सकें जिसमें हम रह रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर से मिलने की तैयारी करें। हम अपने सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करें और हर कहीं जो पीड़ित हैं। हे यीशु, अपनी कलीसिया को याद करें, विश्वव्यापी कलीसिया, आज सुबह जो सारे संसार भर में, कुछ वहाँ जंगल में हैं, कुछ नीचे निर्णय की घाटी में, उनमें से कुछ पहाड़ की चोटी पर हैं, और सारे संसार भर में आपके बच्चे आप पर निर्भर हैं और आपको पुकार रहे हैं, और जैसे पुराने समय के यूहन्ना ने पतमुस टापू पर कहा, इसी क्षण प्रभु यीशु आ। और हम ये जानते हैं कि हम बिना शत्रु की उपस्थिति के नहीं हैं, वो हमेशा ही रुकावट के लिए और रोकने के लिए समीप होता है और कुछ भी करता है जो वो कर सकता है, लेकिन हे प्रभु, आज सुबह अपने बच्चों को विश्वास देना, शत्रु से ऊपर उठने की सामर्थ्य देना, जिससे कि उनके हृदयों को खोले और उनके प्राण को उपजाऊ भूमि बनाए, जहां पर जीवन के वचन को बोया जा सके और महान आनंद और एक बहुत बड़ी कटनी को लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप अपने वचन और अपने सेवकों को आशीषित करेंगे, मेरी इस कमजोर आवाज की सहायता करना, ताकि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा दृढ़ बना रह सकूं, और फिर प्रार्थना पंक्ति में सामर्थ और विश्वास को देना प्रभु कि हमारे बीच में एक भी निर्बल व्यक्ति नहीं होगा जब हम इस इमारत को छोड़ेंगे, इसे प्रदान करें प्रभु। हम जानते हैं कि हम अंत समय में जी रहे हैं, और हम आपसे मांगते हैं कि अब हमें आशीषित करें जब हम आगे आप पर रुके हुए हैं और आपके वचन को पढ़ते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब मैं वचन में 2 या 3 स्थानों से पढ़ने जा रहा हूं, और जैसा कि मैंने पिछले रविवार को घोषणा की थी कि आज मैं इस पर बोलने की कोशिश करूंगा, मसीहत बनाम मूर्ति पूजा, और आज सुबह का यही हमारा विषय है। और अब मैं कोई धर्म ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही किसी भी तरह से बाइबल का विद्यार्थी हूँ, बस एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ जो अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु से प्रेम करता है। मैं एक धर्म ज्ञानी होने का दावा नहीं करता या किसी के स्थान को लेने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बस अपने हृदय की नम्रता में उन बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिसे मैं अनुभव करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया है, और मुझे अवश्य ही अपनी कलीसिया को देना चाहिए, क्योंकि यही मेरी रुचि है कि यह कलीसिया विकसित होती जाए, कि यह कलीसिया आत्मिक रूप से सही हो। यही मेरी रुचि है क्योंकि यह कलीसिया परमेश्वर की रुचि है और उसकी रुचि मेरी रुचि है, इसलिए मुझे इसे अवश्य ही देखना चाहिए। आरंभ के इतिहासकारों को पढ़ रहा था, एरेनियस और उन लोगों ने कैसे उन्होंने अपनी कलीसिया को संसार की चीजों से निष्कलंक रखा, कैसे वे पुराने शिक्षक लोग वहाँ पर पहुँचकर और वास्तव में उस सुसमाचार के साथ बने रहे। बाइबल तब इस रूप में नहीं लिखी गई थी जैसा कि अभी हमारे पास है, जब तक कि सुधारक नहीं आए और लूथर ने इसे छापा, लेकिन उनके पास वो था जिसे वे सुसमाचार और प्रेरित कहते थे, सुसमाचार और प्रेरित, और वे उसी के साथ बने रहे। अब हमारे पास दो स्थान हैं जहाँ से हम इस सुबह को पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। उनमें से एक यर्मिया की किताब में पाया जाता है, सातवां अध्याय और दसवें पद से आरंभ होकर अठारहवें पद तक है। दूसरा स्थान प्रेरितों के काम 7:49 में देखते हैं, और यदि आप इसके लिए विषय को चिन्हित करना चाहते हैं या इसमें से पाठ्य भाग को, यर्मिया 7 यह 18वां पद है। मैं चाहूंगा कि 10वें पद से पढ़ना आरंभ करूं।
And come and stand before me in this house, which is
और क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आकर जो मेरे नाम का कहलाता है और यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, कि यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन ऐसा करूंगा जो मेरे नाम का कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा और अपने सामने से दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे भाइयों को दूर कर दूंगा, मैंने तुम्हारे सारे भाइयों को निकाल दिया है, यहाँ तक कि अप्रेम के सारे बीज को भी निकाल दिया है। इसलिए इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, और न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, न ही मुझसे कोई बिचवाई करना, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? अब मैं रुकना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं इसका अंतिम पद पढूं। मुझे अब फिर से आरंभ करने दो। परमेश्वर इन लोगों को फटकार लगा रहा है और कह रहा है, यहाँ तक उनके लिए प्रार्थना भी मत करना। मैं 16वें पद से आरंभ करूंगा और अब वहाँ से 18वें पद तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना, इसलिए इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, और न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, न ही मुझसे कोई बिचवाई करना, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलकाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां बनाए। और मुझे क्रोधित करने के लिए तू दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। अब मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के काम की किताब सातवें अध्याय की ओर जाएं और 44वें पद से आरंभ करते हुए और आगे 50वें पद तक पढ़ेंगे। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यीशु के साथ यहाँ पर ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वो दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? यहोवा यो कहता है और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? अब आप वचन को पढ़ने के द्वारा देख सकते हैं कि जहां मैं आज सुबह अपने विचार को रख रहा हूं, पहले मूर्ति पूजा पर आरंभ से मूर्ति पूजा के विषय में बहुत ही कम लिखा है। मूर्ति पूजा की व्याख्या करने के लिए बहुत सी किताबें नहीं हैं। मूर्ति पूजा क्या है और फिर भी संसार इससे भरा हुआ है। मैं सोचता हूँ इसका कारण है क्योंकि इसे वास्तव में लोगों को कभी नहीं समझाया गया, नहीं जानते हुए कि ये क्या होगा। और ये मेरा सौभाग्य रहा है और मेरे जीवन में मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है यात्रा करते हुए किसी मूर्ति पूजा को देखना या जानना कि ये क्या है। और फिर भी पिछले कुछ हफ्तों में मूर्ति पूजा का अध्ययन करते हुए काल्पनिक कथा, यूनानी काल्पनिक कथा और रोमन काल्पनिक कथा को, तब ये मुझे वापस लाता है यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने अब भी उसी चीज को जीवित रखा है, देखने के लिए कि क्या मूर्ति पूजा उसी तरह से बनी हुई है जैसे ये आरंभ में थी। आज यात्रा करते हुए मूर्ति पूजा को देख रहा था और फिर देखते हुए जिस तरह से ये आरंभ हुआ, पढ़ रहा था कि यह कैसे आरंभ हुआ। शुरुआती दिनों में मैं देखता हूँ कि यह नहीं बदला है। अब मैं भारत में रहा हूँ, भारत मूर्ति पूजा से भरा हुआ है, उनके पास वहाँ आग पर चलने वाले लोग हैं और भिन्न। मैं सोचता हूँ एक दोपहर जब मैं बम्बई में पहुँचा, उस दोपहर बाद मेरा मनोरंजन हुआ था, मैं किसी ने मुझे बताया, मैं नहीं जानता कि कौन क्या था, वे बस जैन लोगों के मंदिर में थे और यह या तो 17 या 7 थे भिन्न भिन्न धर्म के, और मुझे इतना पक्का है कि यह 17 विभिन्न धर्मों ने मुझसे वहाँ वचन की चुनौती में मेरा सामना किया था, और उनमें से प्रत्येक दृढ़ता से मसीह के विरोध में है। 17 विभिन्न धर्म, और वे उन्होंने हमसे मंदिर में हमारे जूते उतारने को लगाए और अंदर ले गए, और उन्होंने हमें तकिए पर बैठा दिया। और इसमें कुछ समय लगता है कि सारे बेकार के नियमों में से होकर जाएं, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ, हमें इसमें से होकर जाना था, लेकिन शहर का मेयर, वो खुद एक हिंदू था, हमें जो एक मुसलमान है वहाँ पर लेकर गया। और मोहम्मद एक भविष्यवक्ता था और वो इश्माइल के वंश से बाहर आया जो कि अब्राहम का पुत्र भी था। और ये इस पंक्ति में था जो ये प्रसिद्ध सुसमाचारक आज संसार में है कि वो उनके एक व्यक्ति से भाग रहा था जिसने उसे वचन में मुकाबला करने की चुनौती दी थी। और मेरी राय में सुसमाचारक को कहना चाहिए था, मेरे पास चंगाई का कोई दान नहीं है, लेकिन हमारे विश्वासियों के समुदाय के पास ये दान है। आप मुझे कुछ घंटों का समय दें और मैं यहाँ किसी को लेकर आऊँगा, समझे? लेकिन निश्चित रूप से ऐसा करने में तब सुसमाचारक खुद को उन संगठनों के सामने प्रदर्शित कर देता है जो उसका समर्थन कर रहे थे, और तब उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर दूसरी बार सोचने पर मैं विश्वास नहीं करता कि मैं उस अविश्वासी को परमेश्वर के वचन पर जयवंत तो होने दूंगा। यदि मैं हार गया होता तो भी मैं वहीं खड़ा रहता और परमेश्वर में अपने विश्वास और भरोसे को दिखाता कि वो वैसा ही बना रहता है। जैसा कि इब्रानी बच्चों ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से छुड़ाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यह अधिक साहस की बात होती। और फिर से मैं एक धर्म ज्ञान के विद्वान होने पर और वचन में अच्छी तरह से पद स्थापित होने पर, जैसे बड़ा सुसमाचारक होता है और वो एक जोरदार व्यक्ति है, मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे वचन पर चुनौती दी होती। क्या यीशु मसीह था या नहीं, या क्या मोहम्मद भविष्यवक्ता था या नहीं, और उसे अपनी खुद की बाइबल के द्वारा साबित किया होता था। यदि यह मेरी बुलावट रही होती बाइबल में, जैसे कि यह सुसमाचारक है, इसे समझाने के लिए, मैं उस स्थिति में दृढ़ बना रहता बजाय इसके कि बस इससे दूर भागकर और पीछे हटने लगूं। यह दिखाता है, यह उस सच्चे मसीही के साहस को नहीं दिखाता है जो वहाँ दृढ़ बना रहता है। जीऊं या मरूं, परमेश्वर छुड़ाने में सक्षम है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस चीज के लिए उसके हाथ के लिए पुकारता। लेकिन वे बंबई के बारे में सोचना भूल जाते हैं, जब वहाँ पर अंधा व्यक्ति मुसलमान उस रात्रि जिसने सभा में उसकी दृष्टि को पाया, वे इसका उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये लोग पाखंडी नहीं हैं, वे ईमानदार लोग हैं, उतने ही ईमानदार जैसे आप और मैं हैं, और कभी कभी हम जो यहाँ अमेरिका में हैं, उससे अधिक होते हैं। वे ढोंगी लोग नहीं हैं, वे सचमुच ऐसा विश्वास करते हैं और पूरी लगन से इसका पालन करते हैं। मैं आपको मूर्ति पूजा के विषय में कुछ तो बताऊंगा। मैं उस देवता का नाम भूल जाता हूँ जो अग्नि पर चलने वालों का देवता होता है, लेकिन यह एक बड़ी मूर्ति है, विशाल, कुछ तो एक मनुष्य के चेहरे से मिलता जुलता, एक प्रकार का नक्काशीदार जैसा चेहरा, उनके सभी पापों को सुनने के लिए विशाल बड़े कान इत्यादि के साथ, और बड़े भारी माणिक जैसे बालियां यहाँ उसके कानों में थे, जो कि हो सकता है एक 5 लाख की कीमत का एक टुकड़ा हो सकता है, यह बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी। लेकिन ओह, इस मूर्ति में कितने बड़े बड़े कीमती रत्न जड़े हुए थे। और मंदिर का पुजारी गरीब किसान को लाता है, उसे नहीं, बस एक साधारण सा व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, वो बस एक साधारण मनुष्य होता है, एक किसान जो उसके देवता को एक अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देना चाहता है। और ऐसा करने में वो देवता में अपने विश्वास को प्रकट करता है जब वो मंदिर में आता है और उसके याजक के द्वारा आशीष होती है। और फिर कोयले के कुंड में से होकर चलने के लिए तैयार होता है, जो कि कई फुट गहरा और कई फुट चौड़ा होता है, और पंखे से उसे हवा करते हैं जब तक वे तपकर गर्म नहीं हो जाता। अब यह कोई नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। वो मूर्ति के सामने जाता है, इस पुजारी के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है, और वे उस पर पानी डालते हैं, पवित्र जल और इत्यादि, जिसे पुजारी ने आशीषित किया है। और फिर बहुत सी बार वे एक बड़े कांटे को लेते हैं, मछली का कांटा, बड़ा मोटा हो सकता है, आधा इंच से लेकर 3/4 तक का, वो चौड़ा हुक की उस नोक से लेकर पीछे के भाग तक, और वे उस पर पानी का एक छोटा सा गोला रखते हैं, जैसे गोला सा क्रिसमस के पेड़ का आभूषण होता है, और एक छोटी सी गेंद, और इसे भारी बनाने के लिए पानी से भर देते हैं, और वे पूरी तरह से उन हजारों को लेकर और उन्हें उनके शरीर में फंसा देते हैं, उन्हें बाहर खींचते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके शरीर में उन्हें खींच लेते हैं, जिससे कि उनके देवता उस मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए यातना से होकर गुजरे। वे ढोंगी लोग नहीं हैं। फिर बहुत सी बार वे अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और उस पर कांटेदार एक भाला लेते हैं कि अपनी जुबान में से होते हुए और अपनी नाक में से होते हुए और इसे एक साथ अटका देते हैं, धागे के टाके को लेते हैं और उनके मुंह को एक साथ सिल देते हैं। यदि वे यह कथित बातें गलत हैं, और ऐसी यातना, और फिर आग के इस बड़े कुंड के पास बैठकर वे एक बकरी को घात करते हैं मूर्ति को खुश करने के लिए, उनके पापों के लिए एक जीवन को भेंट चढ़ाते हैं। और आपको उस बकरे की मिमियाने को सुनना चाहिए जब वो बकरा घात होता है और इस पर उनके पापों को स्वीकार करते हैं और बकरी को घात करते हैं, फेंकते हैं, लहू को प्रायश्चित के रूप में लेते हैं। और फिर यदि आग पर चलने वाला यदि वो डर जाता है और यदि डरकर आग में से भाग जाए तो वो अपने ऊपर दोष को लाता है, लेकिन उसे अवश्य ही इन अंगारों में से होते हुए धीमे और स्थिर होकर चलना है। और कभी कभी वे 15 फुट तक गहरे होते हैं, ये जो आग के अंगारे हैं, और हो सकता है 15 फुट गहरा, और हो सकता है 30 गज या 40 गज लंबा, और लगभग हो सकता है 8 या 10 फुट चौड़ा हो, और वे तपते हुए गर्म होते हैं। और उस पर एक लबादे के अलावा कुछ भी नहीं था, जो एक छोटे से लंगोटी की तरह उसके बीच में लपेटा हुआ होता है, और वो वहाँ से बाहर निकलता है, इस सब के साथ ये लटकता है और लहू बह रहा होता है, और मछली के कांटे और हर चीज उसके सारे शरीर पर होते हैं। अपने आप को एक पागलपन की अवस्था में ले जाता है, इतना तक कि सफेद लार उसके मुंह से बाहर आने लगती है। और यहाँ पर वो उस आग में से होकर चलते हुए आता है और चलकर दूसरी ओर से बाहर निकलता है बिना किसी हानि के, आग में से होते हुए। और हो सकता है उसके पैर उस गहराई में जा रहे हों, पैर नीचे आग के अंदर तक 2 फुट या उससे अधिक, जब वो चलता है उन लाल गर्म अंगारों में उसके मनुष्य शरीर को खींचते हैं, वो उस आग में से होकर चलता है और बिना किसी हानि के दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। आप उसके पैरों को देख सकते हैं, ना ही एक भी खरोच होती है या कुछ जला हुआ हो। और ऐसी चीज को देखते हुए और सोचते हुए, यदि एक पागान की मूर्ति के लिए एक बलिदान को देते हैं एक बकरी के लहू से, विश्वास के साथ जो मूर्ति पूजकों को आग से बचाएगा, तो यीशु मसीह का लहू जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए क्या करेगा। अब मूर्ति पूजा एक अजीब सी चीज है, पीछे युगों में से होते हुए हमारे पास ऐसा था, हर एक जब से अनुमान लगाता हूँ समय की शुरुआत से। अब इस मूर्ति की आराधना का प्रबंधक वो मनुष्य है जो मूर्ति को स्थापित करता है, मूर्ति को तैयार करता है, तब वो अंदर जाकर और खुद को इस बड़े आराधना के लिए तैयार करता है। अब वो विश्वास करता है कि यह मूर्ति किसी देवता के स्वरूप में बनी है जिसे उसने कभी नहीं देखा है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो विश्वास करता है कि वो इस मूर्ति की छवि में है जिसे वो इस देवता के लिए बनाता है। अब इसे आप पर न छोड़ें, वो स्वरूप उस काल्पनिक परमेश्वर के स्वरूप में है जिस पर वो विश्वास करता है कि यह है। उसके बाद वो इस मूर्ति के सामने जाता है और खुद को दंडवत करता है और विश्वास करता है कि वो परमेश्वर जो एक अनदेखा व्यक्ति है इस मूर्ति के अंदर उतर कर नीचे आता है, और वो विश्वास करता है कि वो इस मूर्ति के जरिए से देवता से बात करता है। वो देवता स्वयं को इस मूर्ति के अंदर लेकर आता है और उसे वापस उत्तर देता है। और आप में से बहुत से शिक्षक जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने काल्पनिक कथाओं को लिया है, यहाँ तक कि वे देवता वे एक दूसरे के साथ लड़ते थे, वे ऐसा दावा करते हैं और हर एक चीज उन दिनों में। अब दूसरे शब्दों में वो देवता स्वयं को अपनी अलौकिक स्थिति से सम्मोहित करता है इस मूर्ति के अंदर, और इस मूर्ति के जरिए से आराधना करने वाले से बात करता है, और आराधना करने वाला किसी प्रकार की एक निर्मित भावनात्मक चेतना में विश्वास करता है कि मूर्ति उससे बात करती है उसके हृदय से, और उसे उसके पापों के लिए क्षमा किया गया है, और जो भी है इस मूर्ति के जरिए से, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह शैतान है जो इसे करता है। और वे बस चीजों को लापरवाही तरीके से नहीं करते हैं, उनमें से कुछ लोग करते हैं, लेकिन उन चीजों के कुछ बहुत ही सच्चे आराधना करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कहानियां बता सकता हूं कि कैसे उन मूर्तियों में वे शैतान हर प्रकार की चीजों को प्रदर्शित करते हैं, चीजों में से खून निकालता है और बाकी की हर एक चीज करता है। वे शैतान हैं। और यदि आप विश्वास नहीं करते वहाँ वास्तव में एक शैतान है, तो आप विश्वास नहीं करें कि वहाँ एक परमेश्वर है। निश्चय ही आपको इसके विपरीत पक्ष और विपक्ष दोनों पर विश्वास करना होगा। इसलिए वहाँ एक वास्तविक शैतान है और वो एक व्यक्ति है, ना ही एक विचार है, वो एक व्यक्ति है। अब वहाँ इस पर शिक्षा को बताया जाता है जो कहती है शैतान बस एक बुरा विचार है जो आपको मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान एक व्यक्ति है। वही लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा तो बस एक अच्छा विचार है जो आपको मिलता है, परंतु इस बात का विश्वास न करें। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, यह आत्मा के रूप में मसीह का व्यक्ति है। अब ये मूर्ति पूजा करने वाले, और आपने अपने पवित्र शास्त्र के वचनों को तैयार रखा है, मेरा मतलब आपके वचनों में से स्थानों के लिए तैयार हैं, मैं उनमें से कुछ वचनों का हवाला थोड़े ही समय में दे सकता हूँ, उनमें से हम कुछ को पढ़ सकते हैं। अब ये मूर्ति पूजक अपने आप को मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिस देवता की वे आराधना कर रहे हैं वो इस मूर्ति में प्रतिनिधित्व करता है। अब क्या आपने इसे समझ लिया कि आराधना करने वाला एक ढोंगी नहीं होता है, वो वास्तव में किसी चीज को पकड़ रहा है जो उस मूर्ति में मौजूद है, क्योंकि यह उस पर वापस आता है। वह कुछ तो करता है, इसे उस मूर्ति से लेता है जो कि एक काल्पनिक देवता है, ना कि एक वास्तविक। और बहुत सी बार शैतान उन चीजों में आ जाता है, और शैतान कभी कभी सभाओं में घुसकर और अपने आप को परमेश्वर के रूप में नकल करता है। मैंने इसे अपनी सेवकाई में देखा है। अब याद रखना, यह बस हम आज सुबह बस शिक्षा को दे रहे हैं, और मैं इस कलीसिया से चाहता हूँ जब मैं यहाँ पर सेवकाई के लिए निकलता हूँ, जिससे कि बाहर कार्य क्षेत्र में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास्टर के साथ बने रहें और उस शिक्षा के साथ बने रहें जो यहाँ सिखाई जाती है। इस वचन के साथ बने रहें, आप इसे छोड़ना मत। आप वचन के साथ सही बने रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी आए या जाए, आप वचन के साथ बने रहें, उस वचन के साथ बने रहें, समझे। अब और सिर्फ इसलिए कि मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ के पास्टरों में से एक हूँ, भाई नेविल उसी बातों को सिखाते हैं जो मैं सिखाता हूँ, इसलिए बस सीधे कलीसिया में आ जाएं और वचन को सुनें। मैं नहीं जानता हूँ कि वो मेरी अगुवाई कहाँ पर करने जा रहा है। मैंने आज सुबह अपनी पत्नी को मेज पर बताया, मुझ में कुछ तो ऐसा है जो इन सारे वर्षों में पुकार रहा है, मैं इसका पता करूँगा कि ये क्या है। अब मैं नहीं जानता कि ये किस ओर अगुवाई करेगा, ये कहाँ जाएगा, लेकिन जहाँ वो मेरी अगुवाई करता है मैं उसका अनुकरण करूँगा। अब मूर्ति पूजा यह आज भी है। हम देखते हैं, मैं लोगों को वेदी पर आते हुए देखता हूँ, और अंधे शिक्षकों की अंधी बातों के साथ जो कहेंगे बस खोल दो, सब कुछ भूल जाओ, अपने दिमाग को खाली कर दो, आप एक एलिया बन जाएंगे, आप ये वो या कुछ और बन जाएंगे। क्या ही झूठ है। आप परमेश्वर के पास नहीं आते, इसका मतलब है अपनी आत्मा को सभी प्रकार की शैतानी आत्माओं के लिए खोल देना। आप ऐसा न करें। आपको इस बात को अवश्य ही याद रखना चाहिए कि वहाँ एक शैतान है, और वो शब्द दर शब्द मसीह का ही रूप धारण करता है। मैं कुछ समय पहले संत मार्टिन का जीवन इस किताब में पढ़ रहा था कि जहाँ पर एक लड़का था, वो असल में एक भिक्षु था, और उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक होने के लिए बुलाया है, तुम मेरी सुनना, मैं पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक हूँ। और विद्यालय मार्टिन निश्चित रूप से इस तरह की बातों को नहीं सुनेगा, सो उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया क्योंकि लड़के का जीवन इसके अनुरूप नहीं था। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मुझे एक पुराना भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया है, बस एक युवा व्यक्ति, कहा, लेकिन मुझे बुलाया गया है। देखो, दान और बुलावट बिना पश्चाताप के होते हैं। देखो, वे वचन से हट जाते हैं, और जब आप वचन से हट जाते हैं तो आप किसी भी चीज के अंदर आ जाते हैं। और इस लड़के ने कहा, आज रात लगभग आधी रात को परमेश्वर मुझे एक सफेद वस्त्र देने जा रहा है कि आप सभी के साथ बैठूं, यह दिखाने के लिए कि मैं एक पुराना भविष्यवक्ता हूँ। तो वे उस रात उन सभी ने सुना और फुसफुसाते हुए और अंदर आते थे और लोग यात्रा करके आए और लड़के ने एक सफेद वस्त्र पाया। जब मिलने वाले चले गए उन्होंने जाकर और वस्त्र की ओर देखा, यह वास्तव में था एक असली सफेद वस्त्र, बहुत अच्छा दिखाई देता था। लेकिन वो पुराना बिशप वो बस इसे नहीं समझ सका, यह सही प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि यह बस वचन के अनुसार नहीं था, एक सफेद वस्त्र। और जब उसने किया उन्होंने कहा इस वस्त्र को लेकर और संत मार्टिन के सामने खड़े हो जाओ जो परमेश्वर का जन है, और वो ऐसा नहीं करता है, वो उस सच्चे भविष्यवक्ता के सामने नहीं खड़ा होता है, वो खड़ा नहीं होता है। और उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और जब वे उसे लेकर जाने लगे वो वस्त्र लुप्त हो गया और कहीं तो चला गया, वे नहीं जानते थे कि यह कहां गया। देखो जब इसे एक बल परीक्षा में लाया जाता है, यदि आपके पास सच्चा सोना है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अच्छा है या नहीं, यह कहीं भी परीक्षा में खड़ा होगा और परमेश्वर का सच्चा आत्मा परीक्षा में खड़ा रहेगा क्योंकि यह परमेश्वर के वचन पर परखा गया है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैंने लोगों को पागलपन में जाते हुए देखा है, अच्छे लोग। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों नहीं चाहता कि यह टेप को बेचा जाए। मैंने अच्छे लोगों को देखा है और पेंटिकॉस्टल लोगों को देखा है, पास्टर जिन्होंने नहीं समझा, लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं और इसी तरह की हर चीज और कामों को करते हैं और अंत में उन्हें पागलों की संस्थान में लेकर जाते हैं। यह उनके हृदय को खोल रहा था, निर्दोष लोग और शैतान ने वहाँ आकर और जगह को ले लिया। वहाँ एक वास्तविक शैतान है। मैं पढ़ रहा था कि यह एक कहाँ से आया, मैं सोचता हूँ कि यह इरेनियस या मार्टिन था, कोई तो एक बाइबल के कुछ विद्यार्थी जो मुझसे बेहतर इसके जानकार हैं। उसके सिर पर एक सोने का मुकुट था, सफेद वस्त्र पहने हुए, सोने से जड़े हुए जूते, और कहा मैं मसीह हूँ, मुझे स्वीकार करो। वो संत ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर का वो सच्चा भविष्यवक्ता वहाँ खड़ा था, रुका हुआ था, और उन्होंने उससे दो या तीन बार कहा मैं मसीह हूँ, मुझे स्वीकार करो। उसने कहा हमारा मसीह इस तरह से नहीं आता है। यह सही बात है, आपको वचन को जानना है, वचन पर बने रहें। देखो वो बड़ा युद्ध निकट है। अब हमने वर्षों और वर्षों से कलिसिया कलिसिया खेला है, लेकिन अब समय आ चुका है कि जब यम्ब्रेस और यर्नेस मूसा का सामना करेंगे जैसा कि बाइबल ने कहा कि वे करेंगे, और ये आत्मिक लड़ाई होगी, युद्ध वहाँ कुछ ऐसे ही होंगे जो बस जारी रखेंगे। सांप्रदायिक कलीसिया बस सीधे इसके संप्रदाय के अंदर बढ़ती जाएगी और जिस रास्ते पर चल रही है उसी रास्ते पर चलेगी। लेकिन मेरा अर्थ है कि वास्तविक सच्चा विश्वासी उस युद्ध के मैदान में आ रहा है, और अच्छा होगा कि आप अच्छी तरह से जानकार हों और जाने कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप एक दुष्ट आत्मा को इतनी आसानी से ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि यह इस वचन के विपरीत है तो इसका विश्वास न करें, उस वचन के साथ बने रहें। मूर्ति पूजा पुरानी है, यह यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरानी बात है, और वर्षों पहले पुएब्लो इंडियन और वहाँ एरिजोना में वे एक मूर्ति की आराधना करते थे, और यह था उनके पास एक वर्षा का देवता था, और वर्षा का देवता जो एक मिट्टी का कछुआ लेते, और उन्होंने एक मिट्टी के कछुए की एक मूरत बनाई और उन्होंने उस पर ऐसे धब्बे लगा दिए जैसे वो कीचड़ में से निकल कर आया हो, और वे अपने आप को इस कीचड़ के कछुए के सामने गिरकर दंडवत करते हैं, यह विश्वास करते हुए यह एक वर्षा का देवता है जो इस कीचड़ के कछुए की खाल में नीचे उतर आया है और इस कीचड़ के कछुए में से होकर उनसे बात करता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि वह कीचड़ में और नमी में रहता था और वह इस पर एक देवता था। उनके पास एक काल्पनिक कथा है, बस एक बनावटी विश्वास कि यह सच है। अब और उन्होंने ऐसा करने में शैतानों की आराधना की, एक मिट्टी के कछुए की आराधना करते हुए, यह सोचते हुए कि यह वर्षा का देवता है, उन्होंने उन पर आत्मा को लाया निश्चय ही, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपने हृदय को खोल दिया, लेकिन ये गलत आत्मा थी। वैसे ही आज बहुत से लोग अपने हृदय को गलत चीजों के लिए खोल रहे हैं। आपको एक आत्मा तो मिलती ही है, लेकिन बहुत सी बार यह वचन का विरोध करती है, कहते हुए आश्चर्य कर्मों के दिन बीत चुके हैं, यह या वो इस तरह की चीज है ही नहीं। याद रखें, यह एक शैतान है जो मसीह के भेष में है। परमेश्वर हमारी सहायता करे जब हम इस पर थोड़ी देर बाद जाएं कि आप इसे देख सकें। देखो कि यह मसीह के भेष में एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन यह मसीह का आत्मा नहीं है, क्योंकि मसीह का आत्मा हर समय वचन की ओर आता है। वो अपने खुद के वचन का इंकार नहीं कर सकता। अब जब मसीहत रोम में आई, रोम उसी रोम के शहर में जहां 7 मील की दीवार के अंदर 400 पागान या मूर्तियों के मंदिर थे, 400 पागान के मंदिर, और वे देवी और देवताओं के थे, वे देवता और देवियां, स्त्रियां और पुरुष, 400 अलग अलग देवता। इस पर सोचें, 400। अब यही है जो पौलुस ने पाया जब वो रोम आया, यही है जो अक्विला और प्रिस्किल्ला ने देखा था जब उन्हें पेंटिकॉस से दूर भेजा गया था और रोम में एक कलीसिया की स्थापना की थी। यही है जिसके अंदर वे आ गए, पागान मूर्तियों की आराधना। वहाँ रोम में लगभग 20 लाख लोग थे, महानगरीय रोम में, अर्थात वे गुलाम और बाहर के उपनगरों और इत्यादि में लगभग 20 लाख लोग। लेकिन रोम के चारों ओर की दीवारें 7 मील लंबी थी, और उस 7 मील के भीतर ठीक पहाड़ की तलवटी पर 400 पागान के मंदिर थे, पागान के देवी और देवताओं के। अब मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ तो बोलना चाहता हूँ जो मैंने उन इतिहास से लिया है, और मेरे पास ठीक यहाँ पर मेरे साथ एक इतिहास है जिस तरह से उन्होंने आराधना में प्रवेश किया। वे किस तरह से आराधना करने के लिए आए, कैसे एक पागान आराधना के लिए आया। पहली चीज जो उसने की, वो मंदिर में जाकर और याजक को ढूंढा, पागान के याजक को। तब वो उसे बहुत सारे पैसों को दान देता, और फिर एक बलिदान, एक जानवर को लेता देवता को प्रसन्न करने के लिए जिससे वो बात करने जा रहा था। और कभी कभी एक मंदिर में एक से अधिक विभिन्न प्रकार के देवता होते, वहाँ देवता देवी देवता होंगे और बाकी की हर एक चीज एक ही मंदिर में। सो पागान का याजक, वो उस याजक के पास जाता और उसे कुछ पैसे देता, और पागान का याजक उसे वापस एक मोमबत्ती देता, बस एक साधारण वसा की बनी मोमबत्ती। और फिर उपासना करने वाले इस मोमबत्ती को लेते हैं, उसके बाद उसने याजक को भुगतान किया इस मोमबत्ती को लेकर, और इस देवता की उस नियत वेदी पर चलकर जाता है जिससे वो बात करना चाहता था। और इस वेदी पर आग होती थी जहाँ बलिदान को जलाया जाता, मूर्ति के पैरों पर बड़ा पीतल का मंदिर या मूर्ति के, और उसने इस मोमबत्ती को लेकर और इसे आग की वेदी से जलाता है, मूर्ति की वेदी की आग। वो मोमबत्ती को जलाता और उस मूर्ति के सामने उस वेदी के निचले सिरे पर जाकर और इस मोमबत्ती को नीचे रख देता, और फिर उसके उस मोमबत्ती को वहाँ रखने के बाद मुझे लगता है कि यह अन्य सभी देवताओं के बीच बहुत ही विशेष देवता है। वो जानता है कि उसे कौन सी मूर्ति के पास जाना चाहिए। आप जानते हैं कि वापस आकर और उससे बात करें, क्यों मोमबत्ती, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मोमबत्ती को नीचे रखकर वेदी की आग को जला देता, और उसके बाद वह वापस आराधनालय के फर्श पर चला जाता, और वहाँ वह खुद फर्श पर गिरकर दंडवत करता, और वहाँ वो अपना सारा प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी प्रार्थना में लगा देता, और किसी प्रकार के इस बड़े देवता से प्रार्थना करता, एक विश्वास का ढोंग, एक काल्पनिक देवता, इस देवता से प्रार्थना करे कि इस मूरत में आकर और उससे बात करे। इसने कहा कि एक सम्राट अपोलोस की प्रतिमा के सामने खुद इस तरह झुक सकता है कि वो वास्तव में कह सकता है कि उसने आवाजों को आते हुए सुना उस मूर्ति से, उससे वापस बात कर रही थी, खुद को दंडवत कर रहा था। आप इस जगह पर कहेंगे, भाई ब्रैनम, क्या उसने एक आवाज को सुना? मुझे संदेह नहीं है, पर उसने जो कहा, लेकिन यह एक शैतान की आवाज थी। वहाँ जुपिटर जैसी कोई चीज नहीं थी, एक देवता और ये सारे दूसरे देवता जो उनके पास थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दंडवत कर दिया और उन्होंने वहाँ गिरकर और आराधना की, इस रहस्यमय देवता की आराधना की जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे, जबकि उसकी आत्मा उस मूर्ति में थी जो उन्होंने सोचा कि वो ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने उसकी एक मूरत बनाई और उस पर प्रसन्न हुई। तब उन्होंने एक भेड़ को चढ़ाया। फिर जब उसने अपने आप को इस भावना के अंदर पूरी तरह से डुबा दिया, वह फिर से मूर्ति के सामने जाता है और इस बार पागान के पुजारी ने उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामने लाया और इसे मूर्ति के पैरों में रख दिया। और फिर अब मैंने इसे यहाँ इस पन्ने पर लिख कर रखा हुआ है, मैं इसे ठीक से पढ़ देता हूँ, देखा? और वो इस मूर्ति के पैरों के पास जाता है और इस पीने की चीज में से कुछ लेकर और इसका घूंट लेता है और खाने की चीज पर जरा सा टुकड़ा खाता और फिर इसे मूर्ति के पैरों पर डाल देता। वो क्या कर रहा था? शैतानों के साथ भोज कर रहा था, शैतानों, देवी और देवताओं के साथ भोज कर रहा था। बस एक प्रतिरूप छाया मसीह लोगों का मसीह के साथ प्रभु भोज करना, प्रभु भोज का खाना। यह एक प्रकार का पहली कलीसिया, यह सुसमाचार का पहला परदेशी जो रोम में आया था, वहाँ पाया गया, जो इन लोगों में इस प्रकार की आराधना में था। बाल सारे युगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था मूर्तियों का, वो बाल था, बी दो बार ए एल, बस एक सूर्य देवता था। और तब उसकी एक पत्नी थी, चांद देवता, देवी स्टार, आई एस एच टी ए आर स्टार, और इसका ऐसा उच्चारण भी किया जाता है, ए एस टी ए आर टी ई स्टार टे। यह रोम के सिक्के पर है, वो देवी कहलाती थी, चंद्र देवी या स्वर्ग की रानी, देवताओं की माता, चंद्र देव और सूर्य देवता बालिम था। तो लगभग सारे पागान ने उस सूर्य की आराधना की, यहाँ तक कि भारतीय लोग भी उसी चीज को कर रहे थे। जब हम आए यहाँ अमेरिका को पाया, जब अमेरिका की स्थापना हुई थी, आए पूर्वज यहाँ पर आए, उन्होंने पाया कि वे अब भी उस सूर्य की आराधना कर रहे थे, क्योंकि इसमें उन्होंने आराधना की। इसी प्रकार से वे रोम में देवी और देवताओं की आराधना कर रहे थे जब मसीही रोम में पहुंचे। अब अपनी यात्रा में मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मूर्ति पूजा नहीं बदली है और ना ही सच्ची मसीहत बदली है। वे दोनों ही उनके स्थान को पकड़े हुए हैं और पकड़े रहेंगे जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं हो जाता। इस पर मैं बस थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, जिससे आपको इसका एक विचार मिल जाए, और यदि आप आत्मिक हैं, तो आप निश्चय ही इसे पकड़ लेंगे। क्योंकि वह बाल सूर्य देवता था, तो ठीक है, वे रोटियां जो बनाई गई थी, और यिर्मयाह ने यहाँ पर कहा, हमने कुछ समय पहले बताया था, महिलाओं ने बाल सूर्य देवता के लिए रोटियां बनाई थी। क्योंकि आप थोड़ी देर के बाद आगे इस अध्याय में पाते हैं, यदि आप इसे पढ़ते हैं, जहाँ उन्होंने कहा, यदि हम बाल की आराधना नहीं करते हैं तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि बाल उपजाऊ करने का देवता है। दूसरे शब्दों में, हम जानते हैं कि सूर्य फसल को बढ़ने को लगाता है, लेकिन भविष्यवक्ता ने उन्हें बताया, ये इसलिए है क्योंकि तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, यही कारण है कि तुम्हारी फसल नहीं बढ़ती है। लेकिन उन्होंने बाल की आराधना की, कहा कि वे उसकी आराधना करेंगे, उसे भेंट चढ़ाएंगे। अब यदि बाल एक गोलाकार देवता है, अब इसे शब्द दर शब्द पकड़ें और आप बाकी का समझ जाएंगे इस संदेश के अंत को। वो देवता एक गोलाकार देवता था, एक सूर्य देवता, उनके पास बड़ी बड़ी पीतल की प्लेटें थी जो सूर्य को प्रतिबिंब करती थी और आग की तरह दिखाई देती थी। और फिर वो रोटी जो यर्मिया ने यहाँ बताई थी कि वे स्त्रियाँ बाल के लिए इन रोटियों को पकाती हैं, कि इसे गोल बनाया गया था जैसे सूर्य होता है, तो ठीक है, तब इसे वेदी पर रखा जाता था, पागान की वेदी पर भोज के लिए, और सूर्य के समान या चंद्रमा के समान गोलाकार बनाया, क्योंकि यह सूर्य देवता या चंद्र देवता था, वो बालिम था, जिसे हमने कहा ये सारे उपजाऊ का देवता है, वो हर चीज को बढ़ने के लिए लगाता है। अब आरंभ की कलीसिया इस बात का सामना करना पड़ा जब वे रोम में आए, और इसे रोमन कलीसिया के द्वारा कहा गया और विश्वास किया गया, या आज कलीसिया के द्वारा या रोमन कैथोलिक कलीसिया जिसे कहा जाता है कैथोलिक, हम सब कैथोलिक हैं, हम कैथोलिक कलीसिया हैं, हम प्रेरित कैथोलिक हैं, कैथोलिक का अर्थ होता है विश्वव्यापी, और हम प्रेरितों के विश्वास की विश्वव्यापी कलीसिया हैं। जी हाँ श्रीमान, वहाँ दो कलीसियाओं के बीच एक अंतर है, उनमें से एक कैथोलिक विश्वव्यापी प्रेरितिक था, दूसरा एक रोमन कैथोलिक था, और ये कहा गया कि पतरस, या वे इसका विश्वास करते हैं कि पतरस ने रोमन कलीसिया को स्थापित किया। मैं वचन को चाहता हूँ, मैं उस स्थान को चाहता हूँ जहाँ आप कह सकें कि पतरस कभी किसी भी स्थिति में रोम में रहा था, जैसा कि रोमन कलीसिया ने कहा वो वहाँ पर 41 से 46 तक था, और उसी समय पर क्लॉडियस रोम में सम्राट था जिसने सारे यहूदियों को छोड़ने को लगाया। प्रेरितों के काम का 18वां अध्याय पढ़ें और आप पाएंगे कि पौलुस जब वो इफिसुस में गया उसने वहाँ अक्विला और प्रिस्किल्ला को पाया जो वास्तव में यहूदी थे और सतावट के समय के दौरान बाहर निकाले गए थे, और वे यहाँ फिर से फिलिस्तीन में थे क्योंकि क्लॉडियस ने सभी यहूदियों को छोड़कर जाने की आज्ञा दी थी, दोनों मसीही और रूढ़िवादी लोगों को। अक्विला और प्रिस्किल्ला ने रोम में कलीसिया की स्थापना की थी, और उन्हें क्लॉडियस के ऊपर आने के कारण छोड़ना पड़ा था। सारी कलीसिया को लेकर, मतलब मसीही लोगों और सारे यहूदियों को रोम से बाहर कर दिया गया था। अब पतरस कलीसिया का बिशप होने पर, और मैं आपको इस पर वचन से दिखा सकता हूँ, कम से कम लगभग 70 वर्षों तक कि पतरस कभी भी फिलिस्तीन से बाहर नहीं गया था, ठीक वचन में। और आप कहते हैं कि पतरस की रोम में हत्या कर दी गई थी और पौलुस का रोम में सिर काट दिया गया था, यही मध्य सिद्धांत है। मैंने सारे शहीदों के विषय में पढ़ा है जो मैं पा सकता हूँ, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पतरस या पौलुस के बारे में कुछ भी बताता हो, या तो किसी एक के लिए रोम में मारा गया हो। आरंभिक वास्तविक शहीदों में से जो हम पढ़ सकते हैं, उनमें से कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कहता है, वो नहीं था, यह एक मत सिद्धांत है। मैं यहाँ पागानवाद का खुलासा करने के लिए हूँ, इसलिए हम इसे प्रभु और उसके वचन की सहायता से करेंगे। देखो, बस आपको दिखाने के लिए कि कलीसिया किस तरह से है। आप कैथोलिक के विषय में चिल्लाते हैं, लेकिन बस कुछ मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। अब हम पाते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला के बाद वचन के अनुसार रोम से बाहर निकाला गया था, छोटी कलीसिया को एक अनाथ के रूप में छोड़ दिया गया था। वे सारे वहाँ परिवर्तित हुए पागान के लोग थे जो रोमन मसीही कलीसिया के अंदर आए थे, वो आरंभिक कलीसिया जो कि अक्विला और प्रिस्किल्ला और एक पति और पत्नी थे जिन्होंने इस कलीसिया को स्थापित किया था और इसे विकसित किया था। तब हम पाते हैं जैसे ही वे निकले कि उन्होंने अपने खुद के बिशप बनाए और उनके खुद के मध्य सिद्धांत को लिया, और फिर उन्होंने अपनाया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का समर्थन पाने के लिए, और वे जो बाद में आए उनका समर्थन पाने के लिए, क्योंकि उन्हें राष्ट्र की राजनीतिक पकड़ में खड़े होने के लिए सदस्यों को वहां लाना था। वे कलीसिया के सदस्यों को लेकर आए और उन्हें उचित बस अंगीकार करने के द्वारा अंदर लेकर आए। वे परमेश्वर के बारे में उससे अधिक कुछ नहीं जानते जितना कि आज हमारे अमेरिका में रहने वाले कुछ लोग जानते हैं, बस एक पेशे के रूप में, जो कि उनके लिए मसीह को मान लेना एक बहुत बड़ी बात थी। उनके अपने देवता के अलावा ये एक और परमेश्वर है, और वहाँ पर उन्होंने कलीसिया के अपने संविधान में पागान के रीति रिवाजों को अपनाया। रोमन याजक, तब उन्होंने इसे अपनाया, इसे लेते हुए और प्रभु भोज बनाने के द्वारा पहली चीज जो सामने आई वो प्रभु भोज बनाना था। बजाय मसीह की देह की तरह टूटे हुए टुकड़े के, वे इसे सूर्य या चंद्रमा की तरह गोलाकार बनाते। और यह आज के दिन भी यह गोल है, निश्चय ही यह अब भी गोलाकार पापड़ी है और न ही उसकी देह का टूटा हुआ टुकड़ा। यह गोल और चिकना होता है। रोमन याजक आज इस गोल पापड़ी को वेदी पर रखते हैं और इसे मसीह की वास्तविक देह कहते हैं। अब वहाँ इनमें से कुछ उच्च एपिस्कोपेलियन और इत्यादि के बीच एक बड़ा गतिरोध है और कैथोलिक कलीसिया उस सोच विचार पर है, क्या यह वास्तविक देह है या यह देह का प्रतिनिधित्व करती है। रोमन कैथोलिक कहता है यह वास्तविक देह है, क्योंकि यह बाल की वास्तविक देह थी, वो सूर्य देवता जिसने खुद को उस पीतल के टुकड़े पर प्रतिबिंबित किया और उन्होंने इसे गोलाकार बनाया। किसी भी मसीही मेज पर गोलाकार रोटी नहीं होती है। तब वे पूर्व की ओर मुंह करना चाहते थे और आदि आदि, जैसे उन्होंने पागान की आराधना में किया और स्त्रियों को अंदर लाते हैं और आदि आदि, ठीक जैसा कि उन्होंने हमेशा ही किया है, जैसे कि पागान देवी और इत्यादि के लिए करते हैं। अब उन्होंने बस अस्तारते को नीचे उतार कर और मरियम को ऊपर रख दिया, उसे स्वर्ग की रानी बनाया। उन्होंने जुपिटर को नीचे उतार कर और पतरस को ऊपर रख दिया और उन्हें एक मत सिद्धांत को लेना था कि ऐसा करने के लिए उनके पास, जब अक्विला और प्रिस्किल्ला वापस लौटे कलोदियोस के राज्य के 13 वर्षों के बाद, फिर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी कलीसिया पूरी तरह से मूर्ति पूजा के लिए समर्पित हो गई है, लेकिन बढ़कर एक विशाल बड़ी चीज हो गई थी। इन चीजों को अंदर लाने के लिए उन्होंने अवश्य ही पूरी तरह से बाइबल को निकाल दिया होगा। अब मैं एक आयरिश हूँ, मेरे पास, जिसे वे हमारे विश्वास की सच्चाई कहकर बुलाते हैं, जिसका केवल एक याजक से संबंध होता है और इत्यादि। और मैं ये जानता हूँ, याजकों के साथ इंटरव्यू के समय याजक आपसे बाइबल पर बहस नहीं करेगा। बाइबल उसके लिए बस दूसरी किताब है। जब इसे यहाँ पर बिशप शीन ने कहा यहाँ पर लगभग 2 वर्ष पहले कि कोई भी जिसने बाइबल पर विश्वास करने की कोशिश की तो यह कीचड़ से भरे जल में से होकर चलने के समान था, वे इसका विश्वास नहीं करते। उन्होंने वहाँ आरंभ किया और उन्होंने कहा परमेश्वर उसकी कलीसिया में है, ना ही उसके वचन में। यह याजक यहाँ रास्ते पर था जो हाल ही में इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ सेक्रेड हार्ट में। उसने मुझसे कहा या ये कलीसिया की सड़क पर, मैं भूल गया कि ये कौन सी बात है, मैं सोचता हूँ इसे सेक्रेड हार्ट कहा जाता है। वो मेरे पास बपतिस्मे के विषय में बात करने आया। मरियम एलिजाबेथ फ्रेजियर जो पिछड़ गई थी और वो कैथोलिक बन गई, उसने कहा क्या आपने उसे बपतिस्मा दिया। मैंने कहा जी हाँ। कहा आपने उसे कैसे बपतिस्मा दिया। मैंने कहा मसीही बपतिस्मे में। उसने कहा आपका उस तरह से क्या मतलब है। मैंने कहा केवल एक ही मसीही बपतिस्मा है। उसने कहा आपका क्या मतलब है, डुबकी देने के द्वारा। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा आपने उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी दी। मैंने कहा ऐसा तो मसीही बपतिस्मा नहीं है। मैंने कहा मसीही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में डुबाकर होता है। उसने इसे लिख कर रखा। उसने कहा क्या आप यह शपथ खाएंगे या इस वर्णन को बिशप के लिए करेंगे। मैंने कहा यदि वो मेरे शब्द का विश्वास नहीं कर सकता है तो उसे इसके बिना ही रहने दो। मैंने कहा मैं किसी भी चीज की शपथ नहीं लेता। देखा। और उसने कहा, और मैंने कहा श्रीमान अहंकारी नहीं होना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाइबल ने कहा आकाश की या धरती की शपथ मत लेना, क्योंकि यह उसके पैरों की चौकी है और आदि आदि, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा विचित्र सी बात है, कैथोलिक कलीसिया इस तरह से बपतिस्मा दिया करती थी। मैंने कहा कब कब। देखा। लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि साफ साफ कहूँ तो उन्होंने दिया था और हम सब आरंभ में एक थे और मूल उस पेंटिकॉस्ट से आया है। यही पहली कलीसिया का आरंभ है। कहीं भी कोई भी इस विषय में बात कर सकता है। मसीही कलीसिया पेंटिकॉस्टल से आरंभ होती है, एक पेंटिकॉस्टल अनुभव के साथ। पेंटिकॉस्टल लोग पेंटिकॉस्टल बपतिस्मे के साथ आरंभ हुई। सारे पेंटिकॉस्ट पर मूल कलीसिया से आए हैं।
Notice. Now,
अब ध्यान दें, अब हम तब पाते हैं कि उन्हें बाइबल की शिक्षा से दूर होना था, जिससे कि इन चीजों को लेकर आएं ताकि सम्राट और इत्यादि को खुश कर सकें। अब देखो, पतरस एक यहूदी था, क्या ये सही बात है? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि संत पतरस एक कलीसिया में मूर्तियों को लगाने के विचार को अपना रहा है? एक यहूदी जिसे यहाँ तक मूर्ति की ओर देखने के लिए भी मना किया गया था, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वो इस तरह के काम को कर रहा है? ना ही पतरस, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कह रहा है, मेरे लेख जो वहाँ पहले आरंभ में लिखे थे सारे गलत हैं, मैं उन्हें अभी उठाकर फेंक दूंगा, मैं इस रोमन कलीसिया में एक आत्मा के रूप में जीऊंगा और मैं अपनाने जा रहा हूं। खैर, यह तो एक बदला हुआ मनुष्य होगा, इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें एक मत सिद्धांत को आरंभ करना था कि पतरस को कलीसिया में दफनाया गया था और सारी आज्ञाओं को उनके पास छोड़कर गया था और वे मूल कैथोलिक कलीसिया है, पर वे नहीं है। वहाँ पर कोई वचन नहीं है, ना ही कोई इतिहास है, ना ही इसे साबित करने के लिए कुछ भी है, एक चीज भी नहीं, वे नहीं थे। और पहले रोमन कलीसिया का वो पागान याजक बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि आज है। वे विश्वास करते हैं कि वो रोटी मसीह की देह है, कि किसी तरह से मसीह नीचे आता है और वेदी पर रखी हुई रोटी के टुकड़े के अंदर छलांग लगाता है, जिसे चूहे रात भर में उठाकर ले जाएंगे। देखा, विश्वास। और यही कारण है कि कैथोलिक विश्वास करते हैं कि आपको आराधना करने के लिए कलीसिया में अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उस कलीसिया में है। यही कारण है कि वे झुकते हैं और कलीसिया के पास आकर अपने आप पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्योंकि वो रोटी का टुकड़ा परमेश्वर है। यह कुछ भी नहीं सिवाय एक बालाम के सूर्य देवता का प्रतिनिधित्व है। इसके लिए बिल्कुल कोई भी वचन नहीं है। जी हाँ, वो गोलाकार रोटी वेदी पर रखी हुई है। अब इसलिए उन्होंने मसीही शिक्षा को स्वीकार नहीं किया कि इरेनियस, पॉलीकार्प और वे पहले के भाई लोग पौलुस। हम पाते हैं सबसे पुराना चेला जो था, जो सबसे लंबे समय तक जिया, वो यूहन्ना था। वो 3 वर्ष के लिए पथमुस टापू पर बंधुआई में था, क्योंकि उसके पास एक विद्यालय था। वो परमेश्वर के वचन को फैला रहा था या तैयार कर रहा था, इसे एक साथ रख रहा था, पत्रियों को एक साथ कर रहा था। उन्होंने उसे और उसके विद्वानों को ऐसा करते हुए पाया और उन्होंने उसे 3 वर्षों के लिए बहिष्कृत कर दिया। सम्राट की मृत्यु के बाद उसे वापस लाया गया था और फिर उसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा। और वे परमेश्वर अपनी कलीसिया में है या परमेश्वर अपने वचन में है, इसके विषय में बात करते हैं। बाइबल ने कहा कि वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इसके अलावा किसी भी कलीसिया की कोई भी शिक्षा, चाहे वो बैप्टिस्ट होने दो, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल होने दो, या जो कुछ भी हो सकता है जो इस बाइबल के साथ शब्द दर शब्द नहीं बने रहता है, वो गलत है। क्योंकि यूहन्ना ने पथमुस टापू में कहा, पवित्र आत्मा या मसीह उससे बात कर रहा है, यह कहा, यदि कोई मनुष्य इसमें से कुछ भी निकालेगा या इसमें कुछ भी मिलाएगा, तो भला आप कैसे इन पागान की मूर्ति पूजा के प्रतीकों को जोड़ने जा रहे हैं, एक से 3 देवता बना रहे हैं, और ये सारे अन्य पागान के कार्य जो आरंभिक कलीसिया ने इसे कभी भी नहीं सिखाया और वे इसके विरोध में थे। निसियन परिषद, क्या वो 3 अस्तित्व था या 1 अस्तित्व? बड़ी बहस हुई। वे शहीद वहाँ पर आए, उनमें से कुछ के साथ एक व्यक्ति, वो बिशप, पेंटिकॉस्टल के प्रचारक, बीमारों पर हाथ रखने के लिए उन्होंने उसके हाथों में आर पार एक गर्म छड़ी डाल दी और उसके हाथों को इस तरह से पीछे खींच लेते। दूसरे जो खड़े रहते जहाँ पर, वे तलवार को लेकर और उसकी आंखों को बाहर निकाल देते। ऐसा दिखाई देता एक शहीदों का झुंड है जो इस वचन के लिए खड़े हुए थे। हालेलुया, उन्होंने अपने लहू को पुराने समय के भविष्यवक्ताओं के साथ मिला दिया। यह वचन भाई, यह परमेश्वर का वचन है। जब ये पागान के लोग परिवर्तित हुए थे तो वे इन प्रतीकों को मसीहत के अंदर लाए। वे अब बाइबल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल इसे बेनकाब करती है और वे आज आपको ठीक ठीक बता देंगे कि उनके पास नहीं, वे इसका विश्वास नहीं करते हैं। वे कहते हैं ये ठीक बात है, लेकिन कलीसिया के सर्वोच्च शब्द होते हैं। तो हम पेंटिकॉस्ट के विषय में भी इसी बात को पाते हैं, कैथोलिक के विषय में न चिल्लाएं, जबकि हम बस उतने ही दोषी हैं जितना मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और उनमें से हर एक है। आप मेथोडिस्ट इतने पवित्र बनते हो तो फिर आपने जोसेफ स्मिथ को क्यों मारा? यह अमेरिका है और आराधना करने का अधिकार है। मैं विश्वास नहीं करता कि जोसेफ स्मिथ ने जो कहा, लेकिन आपके पास उसे मारने का कोई अधिकार नहीं था। मॉर्मन को सही बात है। आप बैप्टिस्टों, आपने कितनों को ढक दिया है, बाकी आप में से कितने को? और पेंटिकॉस्ट बस उन बाकी के जैसे ही दोषी हैं, एक पुराने रूढ़िवादी व्यक्ति बनते और ढोंगियों का झुंड है, और बजाय नम्रता और आत्मा की सामर्थ्य के आपके पास बिना आत्मा का वचन है। और यदि आप बाकी लोगों की तरह होते तो आप उससे कहीं अधिक नुकसान करते। पहले उनके पागान के समारोह में सभी प्रकार के त्रिएकता के विचारों के साथ और ये सारी अन्य बेकार की चीजें, आप इसे वचन के द्वारा साबित नहीं कर सकते। वचन इसके विपरीत है। कितनी दयनीय बात है, कितनी दयनीय बात है। सो जब उन्होंने रोम की पहली कलीसिया बनाई, मसीहत उन्हें बाइबल को हटाना था और ताकि इन समारोह को ले सके, ऐसा करने के लिए उनके पास किसी प्रकार की बुनियाद होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा पतरस रोम का पहला पोप था और वो अब भी उसी तरह से बना हुआ है। वे कहते हैं तो ठीक है, आइए समझ लो, हम कहें कि वो था। क्या पतरस पेंटिकॉस्ट के शब्दों पर पीछे हटेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक यहूदी मूर्तियों को स्थापित कर रहा है? और जबकि मैं आपको बाइबल में से लिखित वचन के द्वारा साबित कर सकता हूं, ठीक उन दिनों और वर्षों को कि पतरस ने कभी भी फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा, लेकिन एक बार और फरात नदी के पास बाबुल को चला गया। रोम में कभी नहीं था, वचनों के द्वारा यहोवा यो कहता है। ये सब पागान का विचार है। अब हम इसे ठीक प्रोटेस्टेंट वाद के अंदर लाने जा रहे हैं। पेंटिकॉस्ट की ओर देखें, बिना वचन को लिए हुए उस वचन के साथ बने रहें और आप हमेशा ही सही होते हैं। उस वचन से हटना, आप कहीं भी चले जाएंगे। यहाँ कुछ समय पहले एक बड़े पेंटिकॉस्टल स्कूल के साथ एक बड़ी सभा में एक महिला उछल पड़ी, अन्य जुबान में बोल रही थी और वेदी की पुकार में रुकावट को लेकर आई। और उस रात जब मैं वापस अंदर आया, बिल्ली ने मुझसे वहाँ भेंट की। उसने कहा आप जानते हो क्या, उस महिला ने कहा कि उसके पास आज रात एक और संदेश था जो वो देने जा रही थी। और मैंने महिला की ओर देखा, कटे हुए बाल, एक बहुत ही बदन से चिपके हुए कपड़े पहने हुए दिखाई दी, जैसे वो उन कपड़ों में उढ़ेल दी गई हो। वहाँ बैठी हुई अपने बालों को ठीक कर रही थी, उसके मोजों को खींच रही थी। मैं जानता था कि वो छलांग लगाने जा रही थी और वो उछल पड़ी और मैंने कहा बैठ जाओ। उसने बस करना जारी रखा। मैंने कहा क्या आप मुझे सुन रही हैं? बैठ जाओ। ओह प्रभु, जब मैं उस रात को बाहर गया तो वहाँ उसके साथ चार या पांच लोग थे जो मुझे वहाँ पर मिले। कहा आपने आत्मा को शोकित किया। मैंने कहा कोई भी आत्मा जिसे मैं परमेश्वर के वचन से शोकित करता हूँ, उसे शोकित होना चाहिए। मैंने कहा क्या बाइबल नहीं कहती है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के अधीन होती है? यदि वो गवाही दे रही है तो कौन सी भविष्यवाणी है? अन्य जुबान में बोलना भविष्यवाणी होती है यदि इसका अनुवाद किया जाता है। मैंने कहा तब उसे मेरे संदेश समाप्त करने तक प्रतीक्षा करना है, उसके बाद वो इसे कर सकती है। उसने कहा लेकिन आप तो वचन की ही शिक्षा दे रहे हो। मैंने कहा यही है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। उसने कहा उसके पास स्वर्ग से कुछ तो ताजा और नया था जो उससे कुछ भिन्न था। यदि यह रोमन कैथोलिक वाद की वापसी नहीं है तो मैं नहीं जानता कि यह क्या है। हर एक मनुष्य का वचन झूठा और हर एक आत्मा झूठी और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। परमेश्वर का वचन पहले है। आज की जो परेशानी है, उनके पास बहुत सारे प्रकाशन और झूठी बातें हैं। यह वहाँ स्वयं को दंडवत करते हैं और अपने हृदय को शैतानों के लिए खोल रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। यही है जहाँ पर परेशानी बनी हुई है, यही वो मामला है। लोग ईमानदार, सच्चे, अच्छे लोग हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बता सकते। खैर, हम इसका पेंटिकॉस्ट लोगों के रूप में विश्वास करते हैं, हम इसका विश्वास करते हैं बैप्टिस्ट लोगों के रूप में। मैं इसका विश्वास करता हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि मुझे इसमें सुधार करे। देखा, यह सही है, यह वचन है, इसके साथ बने रहें। यह सच्चाई है। तो उन्होंने पहली कलीसिया बनाई, पहली रोमन कैथोलिक कलीसिया, और बजाय उसे बुलाने के, उसे बिशप कहने के, जिसे वे हमेशा ही ऐसा बुलाते थे, अब वे उसे फादर कहते हैं। वे अब भी ऐसे ही बुलाते हैं, और वे यहाँ कहते हैं, आपको इसे स्वीकार करना होगा कि ये पापड़ी मसीह की देह है, और अब तक याजक एक ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर याजक की आवाज को सुनने के लिए बाध्य है। जो इस पापड़ी को मसीह की वास्तविक देह में बदल देता है, और फिर चतुर मनुष्य इसे अपने गले से नीचे उतार देते हैं। ओह प्रभु, ओह कैसे! लेकिन सच्चे आराधना करने वाले, सच्चे बिशप वचन के साथ बने रहते हैं। वे ठीक वहाँ उस निसियन परिषद में बने रहे। उन्होंने उस वचन को ठीक वहाँ पर पकड़े रखा। जी हाँ श्रीमान, वे शहीदों की तरह आए, बाकी सब कुछ, पर वे उस वचन के साथ बने रहे। वे मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और मैं चाहता हूँ कि कोई तो मुझे दिखाए कि जहाँ संत पैट्रिक कभी रोमन कैथोलिक था, वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसने तो उस रोमन कैथोलिक का विरोध किया। वो संत मार्टिन का भतीजा था। मैं यहाँ पढ़ रहा था, इसमें एक महिला जिसने लिखा, हेजलटाइन, श्रीमती हेजलटाइन, निसियन परिषद के कुछ अंश। उसने कहा कि वो उस कार्ड को लेने के लिए ऑक्सफोर्ड में गई थी, उस कार्ड को लेने के लिए, संत मार्टिन की जीवन कहानी। और इस व्यक्ति ने कहा, लेकिन उसे रोमन कलीसिया के द्वारा संत घोषित नहीं किया गया था। निश्चय ही नहीं, उसने इस बात का विरोध किया, और वैसे ही संत पैट्रिक के साथ हुआ। वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, उनके अपने विद्यालय बनाए, वे उन प्रकार की चीजों से दूर हो गए। अब हम पाते हैं ऐसा ही आज है। रोमन कलीसिया ठीक उनके उसी गोलाकार बिस्कुट के साथ जारी रखा है, यह विश्वास करते हुए कि मसीह नीचे आकर और इसमें चला जाता है। और सुनना, क्या आप जानते हैं कि यह याजक दाखरस को पीता है? जब उन्हें इसे एक दूसरे के साथ लेना होता है, वो प्याले को एक से दूसरे के पास देता है, लेकिन मूर्ति पूजक के रूप में याजक दाखरस को पीते हैं। देखा आप, अब भी ये सब मूर्ति पूजा है, बिल्कुल ठीक। वे परवाह नहीं करते, वे आपको बताते हैं, मैं आपसे बाइबल के विषय में बात नहीं करूंगा। उस सेवक या याजक ने मुझसे वहाँ पर कहा, श्रीमान ब्रैनम, आप बाइबल के बारे में बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं एक कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, परमेश्वर वचन है। सही है, अब तो ठीक है, हम इसमें आज के दिन भी पाते हैं। यही कारण है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया को आराधना करने के लिए कलीसिया जाना पड़ता है। उन्हें सिखाया जाता है कि परमेश्वर इस गोल पापड़ी में है, मेजबान आराधनालय में है। समझे, क्या आप नहीं देख सकते कि यह पागान है? निश्चय ही ऐसा ही है। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि लोग जो कुछ भी इस वचन के विरोध में अपनाते हैं, उसी तरह का संगठन है? क्या बाइबल प्रकाशित वाक्य 17 में कैथोलिक कलीसिया को वेश्या नहीं कहती है? क्या इसने प्रोटेस्टेंट को माँ नहीं कहा कि वो वेश्याओं की माँ थी? वही बात वो अपने व्यभिचार के घृणित काम की गंदगी के प्याले में से शिक्षा को देती है। गंदगी और मलिनता केवल मनुष्य का एकत्र किया गया, बजाय जीवित परमेश्वर के वचन के, जो कि सच्चा और बिना मिलावट का है। हे परमेश्वर, हम पर दया करें, ये मेरी प्रार्थना है। इरेनियस ने कहा, मैंने यहाँ एक टिप्पणी को लिखकर रखा है, जो उसने कहा, परमेश्वर का वचन सुंदर बड़े बड़े रत्नों के एक अच्छे समूह के समान है, जिसे वहाँ पर रखा गया था ताकि एक महान सामर्थी राजा की मूर्ति को बनाए। लेकिन कहा, मत सिद्धांत, संस्थाएं, संप्रदाय, उन सुंदर रत्नों को लेकर और उसमें से कुत्ते का आकार बनाते हैं और वचन के अज्ञानी को भरमा देते हैं। ऐसा वे परमेश्वर के मार्ग को दूषित करने के लिए करते हैं और इस पर निंदा लाने के लिए करते हैं। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के वचन को अपने संगठन के अनुकूल कुछ तो कहने का प्रयास करते हैं, आप उस महान राजा के शरीर में से रत्नों को निकाल रहे हैं और कुत्ते की छवि को बना रहे हैं, या एक लोमड़ी की या एक सुअर की या उसमें से कुछ तो, और आप वचन के अज्ञानी को भरमाते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, जो देहधारी वचन के लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर हमारे दर्जों को बढ़ाता है। वचन, वचन के अलावा कुछ नहीं। उस वचन को लें जहां यीशु ने वहां पर कहा, सारा आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जहां इसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसमें से तीन देवता को बनाते हैं। वे सब प्रकार के सिद्धांत को लेते हैं और हर एक प्रकार की चीजों को बनाते हैं और जल में डुबाने की बजाय जल का छिड़काव करते हैं। हर एक चीज इसमें से किसी प्रकार का मनुष्य का निर्मित कीचड़ का गड्ढा बनाते हैं, बजाय इसके कि इसमें रत्न को डालें उस महान राजा मसीह में। ओ हालेलुया, यही तो देहधारी परमेश्वर है। मसीह, वे परमेश्वर के मार्ग को दूषित करते हैं, लोगों को कलीसिया में आने देते हैं। स्त्रियां कटे हुए बालों के साथ श्रृंगार किए हुए ऐसे कपड़े पहने हुए जो लज्जाजनक दिखाई पड़ते हैं। पुरुष इतने कायर हो गए हैं कि एक स्त्री उन्हें कान पकड़कर यहाँ वहाँ घुमाती है। कलीसिया में आते हैं और बंको और बिंगो संगीत बजाते हैं और सभी प्रकार की भ्रष्ट चीजें करते हैं, और प्रचारक और आदि आदि वहाँ समुद्र तट पर नग्न महिलाओं के साथ जो नहाने के वस्त्र पहने हुए और तैरने जाते हैं, सिगरेट पीते हैं और खुद को परमेश्वर के दास कहते हैं, जबकि यह मंदिर परमेश्वर को समर्पित एक पवित्र मंदिर है, न कि संसार की गंदगी के लिए। यह सच है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के रत्नों को लिया और उसमें से एक सुअर को बनाया या एक लोमड़ी को या एक कुत्ता या एक प्रकार की बिल्ली या ऐसा ही कुछ तो, और इसे अनपढ़ अशिक्षित को खिलाते हैं। धन्यवाद डॉक, मेरे पास यहाँ एक बात थी लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। एक रुमाल, जी हाँ, यही है जो वे करते हैं। एरेनियस बिल्कुल सही था। परमेश्वर इस सब के विषय में क्या सोचता है? क्या यह उसी तरह से ही है जैसा उन्होंने कहने की कोशिश की है? ओह, यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यह उसके लिए मायने रखता है। यह मायने रखता है। उसने यर्मिया को उन बातों को क्यों बताया जो उसने उस समय की थी? उसने ऐसा क्यों कहा? यह मायने रखता है। परमेश्वर के पास एक मार्ग है। क्या हो यदि मूसा ने कहा होता, मैं अपने जूतों की बजाय अपनी टोपी उतार दूं? वो दर्शन को कभी नहीं देख पाता। आपको परमेश्वर के मार्ग पर आना ही है। परमेश्वर के पास एक मार्ग है। वहाँ बहुत कुछ है जो कह सकते हैं। आइए यहाँ केवल एक वचन की ओर जाएं। मैंने उनमें से बहुत से वचनों को लिख कर रखा है। आइए हम गिनती 25 को देखें। बस एक मिनट, गिनती 25, हम देखेंगे कि क्या यह परमेश्वर के लिए कुछ भी मायने रखता है या नहीं। आइए देखें कि क्या यह रखता है, क्या ये संस्थाएं, मत सिद्धांत और आदि आदि मायने रखता है। वो एक भला परमेश्वर है। वो सारी बातों को अनदेखा कर देता है। वो नहीं देखता। वो एक रेखा को डालता है और एक सीधी रेखा को खींचता है और आपको उस तक आना होता है। और इसराइली शितिम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। सुनना, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के बलिदानों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। तब ये इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा, इस प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर और यहोवा के लिए सूर्य के सामने लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इसराइली न्यायियों से कहा, तुम्हारे पास जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो, उनमें से हर एक को घात कर दो। परमेश्वर परमेश्वर होना चाहता है, और यदि वो परमेश्वर नहीं है तो वो दूसरे स्थान पर नहीं होगा। उसे बाल को नहीं छोड़ना है, और कुछ मनुष्य के बनाए हुए मत सिद्धांत और किसी मनुष्य की कुछ शिक्षाएं या किसी संस्था का कोई विचार या एक संप्रदाय का कोई विचार उसके मार्ग में आड़े आता है, वो परमेश्वर है। और वो इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा करने में सक्षम है। उसके पास आपके संप्रदाय के होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास आपके बड़े बड़े समाज और आपके विद्यालय और चीजों के होने की आवश्यकता नहीं है। वह उसे लेता है जो वो उसके हाथ में ले सकता है, जो कुछ भी नहीं है इसमें जीवन की सांस को फूंकता है और यह कुछ ऐसा बन जाता है जो उसकी सेवा करेगा। यही है जो उसे परमेश्वर बनाता है। निश्चय ही यह परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आप कहते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, यह मायने रखता है। निश्चय ही यह मायने रखता है। पोप लियो द ग्रेट, उसने 440 से 461 तक राज्य किया। ओह, उसने सोचा कि वह बिल्कुल ठीक वही कर रहा है जो सही है। कलीसिया में आया इससे पहले वहाँ पर विक्टर था और वह भी एक चूहा था, और वह वहाँ पर आया और किस तरह से उसने मसीही लोगों को मृत्यु के लिए डाल दिया और हर एक चीज को किया। फिर किसने ये सब आरंभ किया, इसे वैध हत्या बताते हुए? आप जानते हैं यह कौन था? हिप्पो का संत अगस्ताइन। बिल्कुल यही है जिसने इसे किया। संत अगस्ताइन को एक बार एक मौका मिला था, इसलिए इतिहास बताता है कि एक महान मनुष्य बन गया और पवित्र आत्मा से भर गया। वो वहाँ कार्यस्थल के पीछे लियोन फ्रांस में बैठा हुआ है, उस बड़े विद्यालय में जहाँ इरेनियस ने शिक्षा दी थी, और वे और संत मार्टिन वो इस विद्यालय के आंगन में बैठा हुआ था और पवित्र आत्मा उसके पास आया, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब वो क्या बन गया? एक दो गुना अधोलोक की संतान, जितना वह शुरू में था उससे कहीं अधिक। वो सीधे हिप्पो अफ्रीका में चला गया, वहाँ उसने अपना विद्यालय स्थापित किया और ऐसा था। मुझे दिखाओ, मैं आपको इतिहास में से बता सकता हूँ, यही वो एक था जिसने इस बात के लिए अपने शब्द से मंजूरी दी थी कि किसी भी उस धर्म विरोधी को मार डालना ठीक है जो रोमन कलीसिया के मध्य सिद्धांतों से असहमत होगा। हिप्पो का संत अगस्ताइन। क्या यहाँ कोई बाइबल का विद्वान है या कोई है जो इतिहास को पढ़ता है, जानता है यह सच है? अपना हाथ उठाएं। हाँ, देखा, निश्चय ही वे जानते हैं। हिप्पो के संत अगस्ताइन वही वो एक था जिसने फैसला सुनाया था कि धर्म विरोधी को मार डालना ठीक था जो रोमन कलीसिया से असहमत थे। वे पागान की शिक्षा को मंजूरी देते हैं जो बाइबल से दूर ले जाती है और एक सूर्य देवता की आराधना को स्थापित करता है। आप जानते हैं कि वो कारण कि जो मसीहत है। आप जानते हैं कि आपको क्रिसमस कहाँ से मिला? मसीह का जन्म अप्रैल में हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सौर मंडल अब धीमा होता जा रहा है, जैसे जैसे यह दूर होता जा रहा है, हर एक दिन थोड़ा लंबा होता जा रहा है या थोड़ा छोटा होता जा रहा है और जरा सा छोटा, और 20 तारीख से 25 तारीख तक जब सूर्य देवता इसका जन्मदिन था, बस वहाँ लगभग 5 दिन होते हैं। यही है जब उनके पास उस समय में रोमन सर्कस था, उस समय पर सूर्य देवता के जन्मदिन का समारोह होता था। और अब आप देखते हैं कि आपको अब क्या मिला है। उन्होंने कहा इसे सूर्य देवता बनाते हैं, आइए हम इसे परमेश्वर का पुत्र करके ले लें। और सारा मामला आरंभ से ही पागान का है, और सड़कों पर लोग अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए होते हैं और वे सड़कों पर इधर उधर घूमते हैं और दुकानों में भागते फिरते हैं। और यहाँ एक दिन मेरी पत्नी मुझे बता रही थी, किसी ने कहा मैं नहीं जानती कि पिताजी के लिए क्या लूं। कहा तुम्हारा भाई उनके लिए एक चौथाई बोतल विस्की लेकर जाने वाला है, और दूसरे वाले ने कहा कि वह उनके लिए कुछ शैंपियन लेकर जाने वाला है, और एक ने कहा तो ठीक है मैं उनके लिए एक जुआ खेलने का सामान लूंगा। क्रिसमस का समारोह पागान, शैतान की आराधना, तो ठीक है, लेकिन अगस्ताइन ने इसकी मंजूरी दे दी। यदि आप इसका उल्लेख शंकर के लेख में से करना चाहते हैं, शंकर का लेख SCHMUCKERS, शंकर का महिमा में सुधारक, यहाँ पर जो लिखा गया है कि जब से हिप्पो के संत अगस्ताइन ने कैथोलिक कलीसिया को यह फैसला सुनाया, इसने उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए ताकि वे जिसे चाहें उसे मार सकें जो उस पागान की कलीसिया का इनकार करता है। और संत अगस्ताइन के समय से मसीह के लगभग 300 वर्ष बाद 1850 तक आयरलैंड की बड़ी सामूहिक हत्या कैथोलिक कलीसिया के द्वारा की गई, जहां 8 करोड़ 60 लाख प्रोटेस्टेंट मारे गए थे। यह रोमन शहीदों के इतिहास में है, 8 करोड़ 60 लाख। अब इतिहासकार के साथ वाद विवाद करें, यही वो एक है जिसने ऐसा कहा है। मैं बस उसके शब्दों को दोहरा रहा हूँ। हर कोई जो कैथोलिक मत से असहमत होता है, न ही कैथोलिक शब्द कैथोलिक, वे उस नाम के योग्य नहीं हैं, वे तो रोमन पागान हैं, न ही वे बहुमूल्य लोग, वहाँ पर दसों हजार लोग हैं, बस उतने ही सच्चे हैं, जैसे वे कोई भी अन्य मूर्ति पूजक होते हैं। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जबकि वापस वचन पर देखें, वे एक मूर्ति में हैं, जहाँ हर जगह मूर्तियाँ हैं। देखा तो ठीक है, यह एक मत सिद्धांत, रोमन मत सिद्धांत था। और सुनना, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उससे आगे निकल चुका था। 1640 के वर्ष में जब आयरलैंड में हत्या करना आरंभ हुआ, रोमन न्यायविद कानून और याजकों के नीचे 100,000 संत पैट्रिक के द्वारा मत परिवर्तित लोगों को मार डाला गया था। यदि संत पैट्रिक एक रोमन कैथोलिक था, तो फिर वो अपने ही लोगों को क्यों मारेगा? वे कारखाने में काम करने वाले लोग थे और सब कुछ, यह सही बात है। 100,000 लोग शहीदों की तिथि पर है, जिसे उन्होंने मार डाला क्योंकि वे शिक्षा से असहमत थे। मैं उत्तरी आयरलैंड के कुछ संत पैट्रिक कलीसियाओं में गया हूँ। जी हाँ श्रीमान, मुझे यह देखने का सौभाग्य मिला। यह बस एक बड़ा पुराना ढांचा था, उनके पास खड़ी हुई मूर्तियाँ नहीं थी और उनके पैरों पर चीजें नहीं डाली जा रही थी, और उन लोगों के लिए भुगतान करें कि वापस आकर और उस मूर्ति में आ जाएं। मरियम, जय हो मरियम, और परमेश्वर की माता, उसी तरह से जैसे उन्होंने अस्त्रिते सम्मोहित करने वाली के लिए किया जो मरियम की आत्मा थी। अभी 2 या 3 वर्ष पहले कैथोलिक कलीसिया ने एक नया मत सिद्धांत आरंभ किया कि मरियम मृतकों में से जी उठी थी और स्वर्ग में चली गई है। कितने लोगों को यह याद है? ओह, आप सबको याद है, निश्चय ही अखबार इससे भरे हुए थे। मत सिद्धांत यह मत सिद्धांतों पर बना है और कहीं भी सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। अब आप प्रोटेस्टेंट बस उतने ही खराब हैं जो परमेश्वर के वचन को लेने से इनकार करते हैं। यह प्रोटेस्टेंट कलीसिया का मत सिद्धांत है, वैसे ही जैसे यह कैथोलिक कलीसिया का मत सिद्धांत है, और हम पूरी तरह से गलत हैं जब तक हम जीवित परमेश्वर के वचन पर वापस नहीं आते हैं। सही है, आप असेंबली ऑफ गॉड, आप फोर स्क्वायर, आप पेंटिकॉस्टल वननेस, थ्रीनेस, या जो कुछ भी आप हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर वापस आ जाएं। इनमें से कुछ सांप्रदायिक मूर्तियों को, सांप्रदायिक काल्पनिक जंतु की मूर्तियों को छोड़ दें। वे अपने आप से सम्मोहित करते हैं, शैतान की आत्मा इन सांप्रदायिक मूर्तियों में। क्या आप ये जानते हैं? संप्रदाय एक मूर्ति है। आप कहते हैं, क्या आप एक मसीही हैं? मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। क्या आप एक मसीही हैं? मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। क्या आप एक मसीही हैं? मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। इसका मतलब इससे अधिक कुछ नहीं है कि आप एक सुअर या एक कुत्ता या एक घृणित व्यक्ति हैं। इसका इससे अधिक कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सही है, आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वापस परमेश्वर के वचन की ओर आ जाएं। अब उत्तरी आयरलैंड के इन दुकान के कर्मचारियों और बहुमूल्य लोगों में, यदि संत पैट्रिक, जहाँ पर उसके सारे विद्यालय थे, आप जानते हैं उसका नाम पैट्रिक नहीं था, उसका नाम सुकत था। जब वो एक छोटा लड़का था, उसका अपहरण किया गया था, उसकी बहनों को मार डाला गया था, और वो वापस लौटा क्योंकि उसने कुत्तों को, सुअरों और इत्यादि का पीछा करने के लिए प्रशिक्षित किया। तो उसने ऐसा किया, जब उसने ऐसा किया, तब वे उसने अपने पिता और माता के घर वापस जाने का मार्ग ढूंढा, और उसने एक विद्यालय को आरंभ किया, और उत्तरी आयरलैंड के स्कूल ने कभी भी पोप को परमेश्वर के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया, वे वचन के साथ बने रहे। परमेश्वर उस धन्य संत पैट्रिक, उस महान व्यक्ति को आशीष दे। और आप उन्हें कहते हुए सुनते हैं कि संत पैट्रिक ने आयरलैंड के सारे सांपों को भगा दिया। इतिहास को पढ़ें और देखें कि ये क्या था। संत पैट्रिक ने अन्य जुबान में बोलने पर विश्वास किया। संत पैट्रिक सांपों को उठा लेने या घातक वस्तुओं को पीने में विश्वास किया, और जब वो एक सांप को उठाकर और उसे अपने रास्ते से बाहर फेंक सकता था, उन्होंने कहा वो आयरलैंड से सांपों को भगाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सांपों को उठाने में विश्वास किया था, और कुछ भी उन्हें हानि नहीं होती थी। जी हाँ, ओह निश्चय ही, उनके पास वे ये बड़े विशाल मंदिर नहीं थे। और क्या एक संत करता? आज इरेनियस क्या करता? आज संत पैट्रिक क्या करता? यह देखकर कि सैकड़ों अरबों डॉलर रोमन कैथोलिक धर्म में डाले गए हैं कि बड़ी बड़ी कलीसियाओं को बनाएं और करोड़ों डॉलर की मूर्तियों को और तैयार करें। हर एक चीज बस उसी तरह से है जैसा कि प्रोटेस्टेंट कर रहे हैं। मैंने एक दिन एक कथन को कहा था और इस बात ने हर एक को चकरा दिया। यही कारण है कि मैं इस टेप को रोक देता हूँ। आप बस उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। अंधा अंधे की अगुवाई करता है, उन्हें खड्डे में गिरने दो। केवल यही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। देखो, जब मैंने उन्हें वेदी की पुकार के बारे में बताया तो बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं थी जैसे वेदी की पुकार, उसकी पवित्रता का, अपने आप को उसकी मृत्यु के लिए नम्र करते हुए अपने आप को कुछ भी नहीं गिना। तब पवित्र आत्मा अंदर आकर और हमें ऊपर उठाता है और हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ हम सारी चीजें कर सकते हैं। हम उसके स्वरूप में एक जीवित परमेश्वर का एक जीवित स्वरूप हैं। आपको क्या, जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और परमेश्वर आपके अंदर आता है तो यह आपको क्या बनाता है? परमेश्वर का एक जीवित स्वरूप, ना ही कोने में रखी हुई कोई मरी हुई मूर्ति, ना ही एक संप्रदाय जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है कलीसियाओं के परिसंघ में। नहीं, यही एक मरी हुई मूर्ति है, एक मरी हुई मूर्ति और एक मरा हुआ मतसार, लेकिन व्यक्तिगत में एक जीवित स्वरूप। उस दिन कोई तो शिक्षा को दे रहा था या उसके पास किसी ने लिख कर दिया था, यदि एक मनुष्य बचाया नहीं गया है और यदि एक पुरुष बचाया गया है और उसकी पत्नी बचाई नहीं गई है तो क्या वे रैप्चर में जाएंगे? स्त्री रैप्चर में नहीं जा सकती। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि एक स्त्री रैप्चर में जा रही हो क्योंकि वे एक हैं। बेकार की बात है। यीशु ने कहा एक खाट पर दो होंगे, मैं एक को लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। यह आपके और परमेश्वर के बीच एक व्यक्तिगत मामला है, आपके शरीर को समर्पित करना, चाहे माँ पिता बच्चे कोई भी हो इसे ग्रहण करता है या नहीं। आमीन। हे परमेश्वर, ये भ्रष्ट दूषित गंदी मलिन दुनिया, ये गंदी मलिन कलीसियाएं जो कहलाने के लिए कलीसियाएं कहलाती हैं, ये गंदे मलिन संगठन, ये गंदे मलिन मत सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होते हैं, हे परमेश्वर, एक नम्र छोटे व्यक्ति को कहीं से तो लेकर आएं और उन्हें साफ करें और उन्हें स्वर्गीय स्थानों में ऊपर उठाएं और अपने आप को दिखाएं। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, आमीन। ये क्या ही भ्रष्ट चीज हो चुकी है। हम उसकी पवित्रता के भागीदार बनाए गए हैं, हम उसके स्वरूप में, हम एक जीवित परमेश्वर के जीवित स्वरूप हैं। तब अपने आप के लिए मरे हुए उसके साथ जी उठे। अब सुनना, इसे सुनना, उसका वचन हम में फिर से देहधारी हुआ। ओ भाई नेविल, देखो ये क्या है, ना ही कोई मनगढ़ंत काल्पनिक देवता वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर क्या है? वचन आपके अंदर अपने आप को वास्तविक बनाता है। परमेश्वर की महिमा हो। ओ, मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं एक पवित्र शोर शराबा करने वाला हूँ। हो सकता है मैं हूँ, लेकिन ओ भाई, क्या आप इसे देखते हैं? हर एक संप्रदाय के ऊपर विजयी, सारे पागनवाद पर विजयी, एक जीवित परमेश्वर एक जीवित मंदिर में प्रकट बना। और परमेश्वर का वचन जो कि परमेश्वर है आप में देहधारी हुआ है। क्यों? आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, सारी चीजों पर जयवंत हुए हैं मसीह यीशु में। आमीन। ओह, मैं बस इसे पसंद करता हूँ। मुझे कुछ बातों को छोड़कर और आगे बढ़ना होगा। अब सुनना, तब उसके छोटे से छोटे विश्वासी जन, कोई फर्क नहीं पड़ता कब तक या कौन, छोटा या आप जो भी हो, उसके छोटे से छोटे विश्वासी जन जो उसमें है, सारी बुराई उनके नीचे है। समझे? देखो, मसीह देह का सिर है। क्या ये सही है? तो ठीक है, जहाँ कहीं भी सिर होता है देह इसके साथ होती है। महिमा, जहाँ मेरा सिर जाता है यह मेरे शरीर को इसके साथ ले जाता है, और जहाँ पर यीशु है कलीसिया उसके साथ है। आमीन। वो अपने वचन से बाहर नहीं आता है, वो उसके वचन में बना रहता है, इस पर ध्यान देता रहता है ताकि इसे प्रकटीकरण में लाए, उसकी कलीसिया उसके साथ है। और देखो आप कहते हैं लेकिन भाई ब्रैनम मैं सबसे छोटा हूँ, यह उसके पैरों के तलवे हैं, लेकिन याद रखें उसने आपके साथ विजय पाई है, आपके साथ इसके हर एक अंश पर विजय को पाया है, भले ही कि आप उसके पैरों के तलवे हों। हर एक बीमारी, हर एक शैतान, हर एक शक्ति, यहाँ तक कि खुद मृत्यु भी आपके पैरों के नीचे है, आपके नीचे। महिमा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं आज सुबह 52 वर्ष का हूँ। यह सच्चाई है। यदि मैं इस कलीसिया को समझा सकूँ कि इसे देख पाए भाई, तो हम एक विजयी कलीसिया होंगे। उस पर विश्वास करने वाले सारी बुराइयाँ उसके नीचे हैं। ओह महिमा, मैं थोड़ा परखूंगा, मैं अगली बार फिर से आरंभ करूंगा। सुनना, इसे सुनना। आप कहते हैं भाई ब्रैनम मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। ना ही मेरे पास है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ठीक है भाई ब्रैनम, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ, वैसे ही मैं भी कमजोर हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ, यह मेरी शक्ति नहीं है, मैं अपने अधिकार पर निर्भर रहता हूँ। देखिए मेरे अधिकार ने मुझे दिया है, यह मैं नहीं जो बलवान हूँ, मैं बलवान नहीं हूँ, वो बलवान है और मैं उसका हूँ। यहाँ इस तरह उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ सड़क पर गाड़ियों का आना जाना जारी है, लुइसविले में 4th और ब्रॉडवे पर झूम 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 झूम, बस जितनी तेजी से वे चला सकते हैं चलाते हैं। उस सड़क पर 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हर कोई जल्दबाजी में है, धकेल कर आगे निकल रहा है, हड़बड़ी में है। एक छोटा मनुष्य वहाँ पर चलकर आता है, अपने हाथ को ऊपर उठाता है और भाई गाड़ियाँ ब्रेक लगाकर रुक जाती है। तो ठीक है, उस छोटे से मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उन गाड़ियों में से एक को भी रोक सके, लेकिन उसके पास अधिकार है। महिमा, यह उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, यदि उनमें से एक भी कार उसे टक्कर मार देगी तो यह उस मनुष्य को ध्वस्त कर देगी, लेकिन उसे हाथ को उठाने दो। क्यों? कार के चालक उस वर्दी को पहचानते हैं। ओ भाई, वे उस वर्दी को पहचानते हैं, ब्रेक को लगा देते हैं। क्यों? उसके अधिकार को देखो, देखो उसके पीछे क्या है। शहर की सारी व्यवस्था उसके पीछे है, शहर का कानून व्यवस्था बल उसके पीछे है, वो वर्दी इसका प्रतिनिधित्व करती है, वो भिन्न है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि वो एक अधिकारी है, वो चिल्लाता है रुको। तो ठीक है, उनमें से एक कार झूम करके निकलती है और बस उसे इस तरह से ले जाएगी, लेकिन अच्छा होगा कि वे इसका प्रयास न करें। देखो उस अधिकारी के पीछे क्या है, वे तेज आवाज से ब्रेक लगाएंगे और फिसलेंगे, उसे यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कहना होता है, बस अपने हाथ को ऊपर उठाना है, यही इसे करता है। निश्चय ही उसका अधिकार कानून व्यवस्था बल से आता है, यह सब उसके पीछे है, वो खुद निर्बल है, लेकिन उसके पीछे क्या है, यही है उसका सितारा, उसके वस्त्र, वो पूरी तरह से एक वर्दी को पहने हुए होता है, यही है जो ना ही मूर्ति लेकिन व्यक्तिगत को जो वस्त्र पहनने चाहिए। आओ हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें, आमीन, उद्धार के टोप को पहन लें, इस बड़ी ढाल को, एक दरवाजे की आकार की, उस विश्वास की ढाल को लें। ओ भाई, ये वो नहीं जो वो है, लेकिन वो है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, यही है जो अधिकारी, यह छोटा सा मनुष्य नहीं है जो वहाँ पर खड़ा है, वो बस एक साधारण सा मनुष्य है, लेकिन वो जिसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारा हथियार यीशु मसीह है। जी हाँ श्रीमान, जब वे इसे देखते हैं तो सारे शैतान अपने ब्रेक को लगा देते हैं। जब वे परमेश्वर के उस सारे हथियार को देखते हैं, पवित्र आत्मा का सच्चा बपतिस्मा, आमीन, जिसने इसे सीधे परमेश्वर के सिंहासन से आते हुए देखा, उसके पुनरुत्थान के सारे हथियारों को पहने हुए, आमीन। ऐसा नहीं है कि आप बलवान हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, यह तो वही है जो आपके पीछे है। क्यों? आप मर चुके हैं, आप सेना में भर्ती हो गए हैं, आप पुलिस बल में भर्ती हो गए हैं, आप कानून को बनाए रखेंगे और इन शैतानों पर नियंत्रण रखेंगे, यह सही बात है, आप पुलिस बल में हैं, सारी चीजें आपके पीछे हैं। देखो आपको मरा हुआ माना गया है, आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपका अधिकार जो आपको दिया गया है, क्योंकि आप जी उठे हैं और मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। शैतान इसे पहचानता है। हर चीज अपने ब्रेक को लगाती है जब उनके हाथ ऊपर की ओर उठते हैं। संत मार्टिन एक बार एक न्यायालय में, वहाँ एक व्यक्ति था जो चीड़ फाड़ कर रहा था। एक शैतान वो इस तरह लोगों के बड़े बड़े टुकड़े काट कर निकाल रहा था और लोग भाग रहे थे। वह उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा हाथ खींचा, बड़े नोकीले दांत, वो इस तरह से मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को मुंह में भर के झटके से बाहर खींच रहा था। पागलों जैसा घूम फिर रहा था। आराधना करने वाले और वे दिन जो उसने आगे देखे और जानता था यह इस प्रकार से होगा, जब वो स्वयं उसकी अपनी कलीसिया से बाहर निकाला जाएगा, उस लौदीकियन कलीसिया से। उसने कहा, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। उस संस्था ने उसे बाहर कर दिया था और उन्होंने ऐसा आज किया है, लेकिन वो दरवाजे पर खटखटाने के लिए खड़ा है। ओ परमेश्वर, होने पाए आज उसकी देह के सदस्य यह जान लें कि हम कलीसिया में विजयी हुए हैं। हम मसीह में हैं। हम संसार की इन सारी चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारी स्त्रियां उनके बाल क्यों कटवाना चाहती हैं? परमेश्वर ये दिखाता है कि कुछ तो गलत है। वे अपने आप को कामुक दिखने वाली चीजों में क्यों प्रदर्शित करना चाहती हैं? हमारे लोगों के हृदय में क्यों भूख है कि एल्विस प्रेस्ली जैसे एक व्यक्ति को सुने, या इनमें से कुछ आवारा या आदि आदि वहाँ एक पुराने गिटार के साथ खड़े होकर और वो पुराना चीखने चिल्लाने वाला कर्कश संगीत बजाता है और हमारी युवा लड़कियों को झूमने को लगाता है और उनके अंतर्वस्त्र और आदि आदि को निवस्त्र करता है परमेश्वर। और उसके बाद वो लड़का पेंटिकॉस्टल होने का दावा करता है। ओ परमेश्वर, क्या है इस पैट बून की ओर देखें जो चर्च ऑफ क्राइस्ट के सदस्य होने का दावा करता है, और ये सारी अश्लील गंदी चीजें। हे परमेश्वर, अपने आप को चर्च ऑफ क्राइस्ट से कहकर बुलाते हैं। परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि अधिकार की मोहर एक संप्रदाय का नाम नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य है, मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में है। परमेश्वर, होने पाए ये लोग यहाँ इस सुबह उसमें प्रवेश करने का प्रयास करें, और यदि ये टेप तभी उस देश में जाना चाहिए जहाँ पर वे लोग हैं। प्रभु, वे यह जानने पाए कि इसे ईर्ष्या से नहीं कहा गया था क्योंकि मैं खुद गलत हो जाऊंगा, लेकिन जिससे कि कलीसिया विजयी हो सके और अपने स्थान को महसूस करे, जिससे वे देखें कि ये सारी मूर्तियां कहां पर हैं, जहां कैथोलिक कलीसिया स्पष्ट रूप से सामने आती है और इसे एक मूर्ति बना दिया है। प्रोटेस्टेंट इसे एक संगठन बनाते हैं और बस उतना ही बुरा। वचन का इनकार करते हैं, भक्ति का भेष तो धरते हैं, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। हे परमेश्वर, आपका वचन कितना सच्चा है, हर एक वचन। अब हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करेंगे, और होने पाए ये संदेश हृदय की गहराई में उतर जाए, और होने पाए लोग, होने पाए ये कलीसिया, जैसे कि ये छोटा सा आराधनालय अब एक कलीसिया के निर्माण की प्रक्रिया में है। होने पाए कि वे कभी भी किसी सुंदर चीज की ओर न देखें, केवल लोगों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त प्रयास करें। परमेश्वर, होने पाए वे कभी भी देखने के लिए न जाएं और कहने के लिए हम उस बड़े आराधनालय के सदस्य हैं जिस पर बड़ा गुंबद है। परमेश्वर, इसे एक खाली ढांचा होने दो। होने पाए वे यीशु मसीह के उद्देश्य से कभी भी दृष्टि को ना भटकाएं। होने पाए वही वो एक हो जो उनके मंदिर को भर दे, और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग उनके हृदय की वेदी पर उतरेगी। यही है जहाँ पर वो सच्ची वेदी है। प्रभु, ये हर एक व्यक्तिगत के हृदय में है। मैं आज सुबह प्रार्थना करता हूँ कि यह वचन हर एक हृदय की वेदी पर इतने बोझ को रखेगा, यहाँ तक कि वे इससे कभी भी दूर नहीं हो सकेंगे, कि वे विचारशील और समझदारी से सुसमाचार के लिए आएंगे वचनों पर विश्वास करते हुए, और न ही उनके हृदय को दुष्ट शक्तियों के लिए नहीं खोलेंगे, या सनसनी महसूस होना, या चीखना, या कूदना, या कुछ प्रकटीकरण किसी शारीरिक रूप में या इसी तरह से कुछ, लेकिन मसीह की वास्तविक सच्ची प्रेम पूर्व मसीह की आत्मा, जहाँ पर वो स्वयं को प्रेम और सामर्थ्य में प्रकट करेगा। इसे प्रदान करे प्रभु, बीमारों और पीड़ितों को चंगा करें। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
I love him.
salvation on Calvary's I love him because he first loved me and purchased my salvation.
हमारे झुके हुए सिरों के साथ कितने लोग अपने हृदय को वेदी पर रखेंगे और इसे परमेश्वर के लिए एक भूमि बनाएंगे, जिससे कि वो अपने वचन को आपके हृदय की वेदी पर बोल सके, जो मसीह के पुनरुत्थान के जीवन को लेकर आएगा। क्या आप अपने हाथों को उठाकर और कहेंगे, परमेश्वर मैं इसे अपने पूरे हृदय से चाहता हूँ। परमेश्वर आपके भूखे हृदयों को आशीष दे। दर्जनों के बाद दर्जनों, इसे वहीं पर छोड़ दो, बस इसे वहीं पर छोड़ दो। अपना बोझ प्रभु के पास लेकर आओ और उसे वहीं पर छोड़ दो। यदि हम भरोसा करते हैं और कभी संदेह नहीं करते हैं, तो वह निश्चय ही हमें बाहर निकालेगा। हमारे बोझ को प्रभु के पास ले आओ और इसे वहीं पर छोड़ दो। ठीक आपके हृदय में उद्धारकर्ता मसीह को याद करें। याद करें, वो आपके लिए मरा। और यदि आप केवल अपने आप के लिए मर जाते हैं, तो ये आपके शरीर को खाली कर देगा, आपके प्राण को खाली कर देगा, आपके हृदय को खाली कर देगा इस संसार की हर एक चीज और उसके सारे सुख विलास के लिए। तब मसीह आप उसके साथ जी उठेंगे। यदि आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, तो यहाँ पर पानी से भरा हुआ एक तालाब है, और जब आप उस पानी में से ऊपर उठते हैं, तो आप एक नए जीवन में मसीह के साथ चलने के लिए उठ रहे होते हैं। तब आप मरे हुए होते हैं। आप अब और नहीं, गुस्सा और हर चीज चली जाती है। आप मसीह में एक नई सृष्टि होते हैं। तब वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाकर खड़ा करता है और आपको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है, इस संसार की सारी शक्तियों से बहुत ही ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने छोटे हैं। यदि आप एक छोटी कपड़े धोने वाली महिला हैं, यदि आप बस एक भाई हैं जिसके पास उसका अपने क ख ग को भी नहीं जानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप मसीह में हैं, सारी चीजों पर जयवंत हैं, और आपका अधिकार हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर है, और हर एक सामर्थ जो शैतान के पास है, आप मसीह में हैं जयवंत, जबकि आपने अपने सिरों को झुकाया है। मैं जानता हूं कि आज की सुबह यहां पर एक भाई आया हुआ है, भाई सिंक। मैं सोचता हूं कि वे उसे सिंक, जिम सिंक कहकर बुलाते थे, जो मैं सोचता हूं कि और यहां हमारे भाई इस वचन के शिक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। क्या यह सही नहीं है, भाई सिंक? हमें आज सुबह उस पर हाथ रखना है, ठीक इससे पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि उसे एक सेवक करके नियुक्त करें, हमारे भाइयों में से एक की कलीसियाओं में जाकर सुसमाचार को प्रचार करे। भाई जिम सिंह, क्या आप यहाँ वेदी पर आएंगे? आइए भाई नेविल। भाई जूनी जैक्सन, क्या आप यहाँ पर हैं? इस विश्वास का कोई और सेवक है? भाई जिम सिंह यहाँ इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं जिसका हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर का पुत्र, या विश्वास करने के लिए कि वह वास्तव में कुआरी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र है। क्या यह सही है भाई सिंह? आप विश्वास करते हैं कि वो मरा और तीसरे दिन फिर से जी उठा, हर एक चीज पर विजयी हुआ और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ के केंद्र में जो ऊंचे पर है, हमेशा ही हमारे लिए बिचवाई करने के लिए जीवित है। आप यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा के लिए पानी के बपतिस्मा में विश्वास करते हैं। आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करते हैं, बस जैसा कि परमेश्वर से देगा, चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ जो विश्वासी के पीछे पीछे आते हैं, वो यह विश्वास करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके पास एक ऐसा जीवन था जो लोगों के सामने बेदाग है। वो यहाँ कलीसिया में अक्सर उनके लिए यह प्रचार करता है, और मैंने पाया वो परमेश्वर का एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब इस कलीसिया के पास क्या यहाँ पर कुछ बोलना है? कोई भी मनुष्य जिसके पास भाई सिंह के विरोध में एक शब्द है, इसे अभी कहें या तो हमेशा के लिए चुप्पी बनाए रखें। कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि इस संदेश के प्रचार के साथ और इस वचन के साथ जो भाई सिंह और आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा कि भाई सिंह को नियुक्त किया जाए और यहाँ इस कलीसिया से सुसमाचार के सेवक के रूप में भेजा जाए इन संदेशों को प्रचार करने के लिए, जैसे आज सुबह प्रचार किया गया है कि हर जगह वे संसार भर में जा सकें जहाँ प्रभु उन्हें भेजेगा, अपने हाथों को उठाकर और कहें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भाई सिंह, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। भाई नेविल, क्या आप अपने हाथ भाई सिंह पर रखेंगे? जब आप बाइबल पर अपना हाथ रखते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके पास लाते हैं एक मनुष्य को जिसे इस संसार की भ्रष्टता में से बाहर लाया गया है, जिसने अपने आप को अपने लिए मरा हुआ मान चुका है और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा को पाने की प्रतिज्ञा के साथ जी उठा है और अब स्वर्गीय स्थानों में है और सेवकाई के लिए उसके जीवन की पुकार को महसूस करता है। हे परमेश्वर, इस कलीसिया के प्राचीनों के रूप में, जैसे कि सभा और सामान्य अध्यक्ष और इत्यादि के रूप में, उस झुंड की निगरानी करने के लिए जिसकी देखभाल के लिए पवित्र आत्मा ने हमें तैयार किया है, सभा के लोगों ने अपने हाथ को उठाया है यह जानते हुए कि भाई सिंह कि वे एक धर्मी मनुष्य हैं, इसलिए हम अपने हाथों को उन पर रखते हैं, जैसे कि भाई नेविल और मैं आपके प्राचीनों के रूप में, और इसके द्वारा हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं और भाई जिम सिंह को यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर नियुक्त करते हैं। इसे प्रदान कीजिए, होने पाए वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, होने पाए वो कभी समझौता न करे, होने पाए वो आपके लिए प्राणों को जीते, और परमेश्वर हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और भाईचारे की प्रतिज्ञा करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी वो जाते हैं उनका समर्थन करें, प्रार्थना में और सहायता में और किसी भी तरह से जो हम कर सकते हैं उसे ग्रहण करें। हे परमेश्वर, जैसा कि हम उन्हें आपके सामने रखते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आपके हाथों को वचन पर रखते हुए, और वहाँ मेरे भाई सिंह हैं, मैं आपको मसीह में भाई और हमारी संगति में नियुक्त करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है, और सभा के लोगों ने कहा आमीन, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुसमाचार में करने के लिए बहुत कुछ है जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, हर चीज में आपके साथ 100% खड़े हैं जो हम सहायता के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या वो अद्भुत नहीं है? ओह प्रभु, मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद करता हूँ। ये ठीक है, वो है जैसा कि मैं अब समझता हूँ, वो होलीनेस टैबरनेकल के पास्टर के पद को ले रहा है जो यूटिका इंडियाना में है, जहाँ वो वहाँ से अधिक दूर नहीं रहता है। अब आइए देखते हैं, ओह क्या हमारे पास भी भाई लोग हैं? ओह मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे पास अभी भी प्रार्थना करने के लिए बीमार लोग हैं। क्या हमारे पास नहीं है? तो ठीक है, क्या उन्होंने आपने कुछ प्रार्थना के कार्ड दे दिए हैं? तो ठीक है, आइए कुछ प्रार्थना कार्डों को जल्दी से बुलाते हैं। अब हर कोई बस कुछ समय के लिए शांत बैठ जाए, हमें बहुत देर हो चुकी है। क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? तो ठीक है, प्रार्थना कार्ड वे लोग जिनके पास प्रार्थना के, आपने उन्हें कहाँ से दिया है? एक से, तो ठीक है, प्रार्थना कार्ड नंबर एक, क्या आप आएंगे? नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच, प्रार्थना कार्ड नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक यहाँ पर खड़े हो जाएं, जितनी जल्दी आप अभी कर सकते हैं, यदि आप उठ सकते हैं। यदि आप नहीं उठ सकते हैं तो ठीक है, हमें बताएं, हम आपको लेकर आएंगे, हम जितना संभव हो सके उतने लोगों को लेने की कोशिश करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, छः, सात, आठ, नौ, दस, और केवल दो ही लोग उस पर खड़े हुए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वे सारे प्रार्थना के कार्ड हटकर इस दूसरी ओर आ जाएं, इस ओर यहाँ पर आ जाएं, इस ओर यदि आप आते हैं। ओह क्या वो अद्भुत नहीं है? अब हर कोई बस आदर पूर्वक रहे जितना आप कर सकते हैं। अब लगभग 10 मिनट, बस लगभग 10 मिनट। अब जिनके पास प्रार्थना कार्ड हैं, हमने एक घोषणा की थी कि वे लोग जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने प्रार्थना कार्ड के साथ आएं, और इसलिए कि हम नहीं चाहेंगे, देखो वे वापस आते ही रहते हैं और फिर वे परमेश्वर के दानों को एक आत्मा को बुलाने के समान उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। क्या आप ये विश्वास करते हैं? कितने लोग आज सुबह इस संदेश को सत्य होने का विश्वास करते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इसे अपने पूरे हृदय, प्राण और मन से विश्वास करता हूँ। अब ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारे पास यहाँ लगभग 50 लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना की जानी है, कुछ इस प्रकार से। अब सुनना, अब आप में से हर एक जन मसीह में है, आप मसीह यीशु में हैं, सारी बीमारियों पर जयवंत हुए हैं। आप सब जो प्रार्थना की पंक्ति में हैं, मसीह लोग हैं, फिर से जन्मे विश्वासी लोग हैं, तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं, तो फिर आपका स्थान मसीह में है। आप पहले ही विजयी हो चुके हैं और केवल एक चीज जो आपको अब करना है कि जो परमेश्वर ने सत्य कहा है उसे स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें। मैं शायद उस पंक्ति के लिए विचारों को परखने के लिए नहीं ले सकता, ऐसा करने के लिए बहुत अधिक होगा, हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, यह मेरे लिए नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बाकी का दिन यहाँ रुक सकता हूँ। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अब हम मसीह में हैं। अब हम मसीह में स्थितिगत रूप से बैठे हुए हैं। आमीन। ओ प्रभु, क्या ये बातें जो मैंने सिखाई हैं, वे सत्य हैं? यदि ऐसा है तो वह स्वयं को प्रदर्शित करेगा, यह सही है। प्रार्थना पंक्ति में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए अजनबी हैं? मैं आप में से बहुत से लोगों को जानता हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग अजनबी हैं। अपना हाथ ऊपर उठाएं। मैं नहीं जानता कि आपके साथ कुछ गलत है। अपना हाथ ऊपर उठाएं। पूरी पंक्ति में तो ठीक है। क्या वो मसीह है? आप इसे विश्वास करते हैं? आपके पास अवश्य ही विश्वास होना चाहिए। आपको अवश्य ही इसका विश्वास करना चाहिए। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। आपको अपनी स्थिति को जानना होगा, आपको अपने स्थान को जानना होगा। क्या ये सही है भाई वेस्ट? ये सही है। अपने स्थान को जानो। मसीह ने प्रतिज्ञा की है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। वो व्यक्ति जो वहाँ पीछे खड़ा हुआ है, उसके कमर में कुछ तो गड़बड़ है। आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप प्रार्थना पंक्ति में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप पीछे जाकर और बैठ सकते हैं। यह छोड़कर जाने वाला है और यह कैंसर नहीं है। वापस जाकर और बैठ जाएं। यह सब खत्म हो गया है। मैंने अपने जीवन में उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। यदि हम अपरिचित हैं, भाई, तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। यदि हम अपरिचित हैं, क्या बात है, वो चंगा हो गया है। यहाँ इस वेदी पर क्या आप विश्वास करते हैं? आपके बारे में क्या है? हम अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है। आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं? क्या आप इस संदेश का विश्वास करते हैं जिसका मैं प्रचार करता हूँ? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी पीठ की समस्या आपको छोड़ देगी? आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? श्रीमान बर्कहार्ट, आप ओहियो वापस चले जाएं। आप चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ किसी और के लिए हैं। यह एक महिला है और वो भी ओहियो से है। यह सही बात है। उसका नाम एलिस मैकवन है। यह सही है। उसका एक ऑपरेशन हुआ था। यह सही है। पेट की परेशानी और स्त्री समस्या और घबराहट, क्या यह सही है? केवल विश्वास करें और वो चंगी हो जाएगी। आगे बढ़ें और इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। वो इसे पा लेगी। आप कैसे हैं? मैं आपको नहीं जानता। हम अजनबी हैं। क्या यह सही है? आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि हम मसीह में विजयी हुए हैं? यदि आप विश्वास करती हैं, आपकी घबराहट और आपकी परेशानियां और चीजों के साथ जो आपको है, तब श्रीमती एलन, आप अपने घर वापस जा सकती हैं और स्वस्थ रहें। मैं विश्वास करता हूं कि हम अजनबी हैं। क्या हम नहीं हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ऐसा पहली बार है जब हम कभी मिले हैं। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या आप मुझे उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? आप इसे विश्वास करती हैं? आप गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, यह सही बात है। क्या ऐसा नहीं है? आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। आप वहाँ दक्षिण से हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। वो आपके पीछे आपके पति हैं। आज सुबह उसके हृदय में एक मनुष्य है, एक मित्र जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। कहूँ तो मैं किसी को तो देखता हूँ, आप मेरे माता और पिता के मित्र हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर आता है जिसे एलसी या एसटी बुलाया जाता है, या ऐसा ही कुछ, एसटी या ऐसा ही कुछ, यह आपका बेटा है, जेटी, वहाँ आप हैं, एसटी नहीं, यह जेटी नहीं है, मैं जानता हूँ, यह एक छोटा काले सिर वाला मनुष्य है, मैंने उसे ठीक यहाँ सामने खड़ा हुआ देखा है, जहाँ वो अभी है, घर वापस जाएं, आपके पास आपकी विनती है, घर वापस जाएं। क्या वो आज सुबह यहाँ पर है, वो व्यक्ति जो वहाँ जॉर्जिया से है? जी हाँ, टीएस, जी हाँ, मैंने आपके पिता और माता को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और आप जानते हैं कि ये सच है, लेकिन मैंने आपको ठीक तब उनके सामने उपस्थित होते हुए देखा है, मैं जानता था कि ऐसा था, आपके पास आपकी विनती है, संदेह न करें। आप सब अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब कितने लोग करते हैं? आप में से हर एक जन सारे मसीह में हैं। आप कहते हैं क्या यही सुसमाचार है? बिल्कुल ठीक, यही है जो यीशु मसीह ने किया, बिल्कुल ठीक, यही है जो प्रेरितों ने किया, बिल्कुल ठीक, यही है एरेनियस और बाकी के लोगों ने किया, यह ठीक बात है। आप इसे विश्वास करते हैं? तब अपने सिर को झुकाएं। यहाँ आए प्राचीन, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस तरह से सारी पंक्ति में से होकर निकलते हैं। हमने वहाँ पर दो या तीन को चुना है। ठीक यहाँ पर नीचे आ जाएं। मेरा यह भाई नेविल परमेश्वर का जन है, मैं इसे विश्वास करता हूँ। हम यहाँ इस पंक्ति में से होकर निकलेंगे और हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन पर हाथ रखेंगे। आप सभी विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे? आप में से हर एक जन यहाँ पर, हर कोई इसे विश्वास करेगा? तो अब अपने सिर को झुकाएं। हम कलीसिया की विजय में हैं। प्रभु यीशु, मैं इस भाई को जानता हूँ, यही कारण है कि मैंने इस विषय में उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करें प्रभु, और उसे उसकी विनती का उत्तर दें यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय पिता, इस छोटे भाई पर हाथ रखने के साथ आज सुबह हम यीशु के नाम में उसके छुटकारे के लिए मांगते हैं, आमीन। ओह आप स्वर्गीय पिता, यहाँ हमारी बहन डाउच को दीजिए, एक प्यारी बहन जो यहाँ हमारी एक सच्ची मित्र रही है, मेरे परिवार और हमारे प्रियजनों के लिए। हम विश्वास करते हैं कि वो और उसका पति आपके बच्चे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप आज सुबह बहन के विनती को स्वीकार करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर यीशु के नाम में हमारी बहन ब्रूस को आशीष दे। हम जानते हैं प्रभु कि वो आपकी दासी है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी विनती का उत्तर देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, इसे समझते हुए कि केवल आप ही बहन ब्लैंकको को चंगा कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे आशीष दें और उसके लिए इस विनती को प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। स्वर्गीय पिता, अपनी बहन पर हम अपने हाथों को यीशु मसीह के नाम में रखते हैं, आपकी महिमा होने के लिए, उसके छुटकारे के लिए मांगते हैं, आमीन। ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, और हम अपने हाथ इस बहन पर रखते हैं जो चंगी हो जाएगी यीशु के नाम में, इसे प्रदान करें प्रभु। जबकि यह घबराया हुआ कांपता हुआ शरीर यहाँ पर खड़ा हुआ है प्रभु, पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे और थका हुआ, लेकिन आप परमेश्वर हैं, इस युवा महिला को चंगा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे भाई उसकी विनती का उत्तर दें, इसे प्रदान करें पिता। हम उस पर हाथों को रखते हैं और शत्रु को दोषी ठहराते हैं, वे जो उसके प्राण को जहर देते हैं या उसके सामने एक काले निशान को लगाते हैं, होने पाए वो आज सुबह उस पर विजयी होकर उठे प्रभु, और मसीह यीशु में अपने स्थान को जान ले, और उसके पास वही होगा जो उसने मांगा है यीशु के नाम में। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में हमारे भाई पर हाथों को रखते हुए उसकी विनती को प्रदान करें, आमीन। यह प्यारी छोटी सी लड़की पिता यीशु के नाम में होने पाए प्रभु, दया करना परमेश्वर की महिमा के लिए। हम उसके छुटकारे के लिए मांगते हैं परमेश्वर, हम इस माँ के हृदय की पुकार और उसकी पुत्री की पुकार को जानते हैं परमेश्वर। आज सुबह उसके विश्वास को प्रदान करें और फिर इसे ठीक अभी लागू करें, यह जानते हुए कि उसके पास इसके ऊपर सामर्थ्य है, और इसे यीशु मसीह के नाम में किया जाएगा। परमेश्वर इस छोटे लड़के को चंगा करें, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे पिता, हम अपनी बहन पर हाथों को रखते हैं और आज सुबह मांगते हैं आप उसके विनती को स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, जब ये छोटी महिला चंगाई के लिए अपने स्थान को लेने के लिए आती है, हम उस पर हाथों को रखते हैं और उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस प्यारे छोटे बालक पर हम अपने हाथों को रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में इसकी चंगाई के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारी बहन पर हाथ रखते हुए उन्हें पाए, आप उसे अभी चंगा करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। इस लड़के पर हम अपने हाथों को रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में होने पाए, वो इसका विश्वास करे। आमीन। स्वर्गीय पिता, यहाँ हमारे साहसी भाई के ऊपर प्रभु आपका दास परमेश्वर का जन, हम उस पर हाथों को रखते हैं ताकि उसकी विनती को स्वीकार किया जा सके। यीशु मसीह के नाम में होने पाए, अब वो अपने स्थान को ले ले। अब यहाँ परमेश्वर का एक पुत्र है, महिमा के समय में जहाँ हम सब समाप्त हो रहे हैं। स्वर्गीय पिता, हमारी छोटी बहन पर जो बहुत ही अंधकार से बाहर निकली है ताकि उजाले में चले, प्रदान करें प्रभु कि उसके साहसी छोटे से प्राण को आज सुबह ऊंचा उठाया जाए उस स्वर्गीय वातावरण के अंदर, और उसकी विनती का उत्तर दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। स्वर्गीय पिता, यहाँ हमारे भाई पर हमारे हाथों को रखा है, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं कि यह विनती उसे प्रदान की जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपनी बहन के बच्चे पर हाथों को रखते हैं और मांगते हैं कि उसकी विनती को उसे प्रदान किया जाए। पिता, जब हम यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उस पर रखते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपनी बहन पर हाथों को रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में होने पाए, उसकी विनती को प्रदान किया जाए यीशु के नाम में। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, जब हमारी बहन इस पंक्ति में से होकर गुजरती है और हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं, होने पाए परमेश्वर का मसीह अब समीप आकर और परेशानी को दोषी ठहराए और उसे चंगा करे। आमीन। स्वर्गीय पिता, हमारे भाई पर हम उस पर हाथों को रखते हैं और मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में कि आप उसे यीशु के नाम में चंगा करें। आमीन। स्वर्गीय पिता, इस लड़की पर हम अपने हाथों को रखते हैं और हमारे बहुमूल्य प्रभु से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं। आमीन। हमारे बहुमूल्य प्रभु, हम अपने हाथों को हमारे भाई पर रखते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, हम उसमें से होकर जयवंत से भी बढ़कर हैं, और हम मांगते हैं कि आप हमारे भाई को उसकी विनती का उत्तर देंगे यीशु के नाम में। आमीन। हमारे पिता, हमारी दासी के भाई पर, क्रूस के इस छोटे से योद्धा पर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपका आत्मा उस पर आए और उसकी विनती को प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, क्रूस के इस साहसी योद्धा पर वह आपके वचन के लिए खड़ा हुआ है, आलोचना और इत्यादि के समय में है और फिर भी वचन के साथ बना रहता है, मसीह यीशु में जैवन से भी अधिक आगे बढ़ गया, उसे उसकी विनती का उत्तर देना पिता। मैं अपनी प्रार्थना को करता हूँ और उसे आपकी आशीष से देता हूँ प्रभु कि आप उसे चंगा करें और उसकी विनती का उत्तर देना यीशु के नाम में। आमीन। स्वर्गीय पिता, ये बालक परमेश्वर के बिना नहीं जी सकता, लेकिन परमेश्वर इसे चंगा कर सकता है। मैं इस पर हाथों को रखता हूँ और शत्रु को दोषी ठहराता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बालक को आशीषित कीजिए और होने पाए आप उसे यीशु मसीह के नाम में फलने फूलने में सहायता करें। आमीन। जैवन से भी बढ़कर है। स्वर्गीय पिता, हमारी बहन को जिस पर हम यीशु मसीह के नाम में हाथों को रखते हैं, परमेश्वर का विजयी भवन देहदारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, होने पाए उसके नाम में से होते हुए परमेश्वर के उस पुत्र का धर्मी नाम यीशु मसीह हमारी बहन को उसकी विनती को प्रदान करे। आमीन। हमारी बहन किड, आपके हृदय को आशीष दे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा कि मैं इस बुजुर्ग पुरुष और महिला को यहाँ हमारे हाथों को थामे हुए हैं, जिसने सुसमाचार प्रचार किया था जब मैं बस एक छोटा सा लड़का ही था। वे कुछ दिनों पहले कैंसर से पड़े मर रहे थे, उन तक पहुँचने के लिए दौड़ रहा था और परमेश्वर की सामर्थ एक 80 वर्ष के व्यक्ति पर उतर आई और उसे चंगा किया, इतना तक कि डॉक्टर चमत्कारिक रूप से चुप हो गए थे, इसे समझ नहीं सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज सुबह उसके विनती को स्वीकार करेंगे। उसकी धन्य छोटी पत्नी प्रभु, जिसने अपने पति को सेवकाई में भेजने के लिए उसने तख्ते पर कपड़ों को धोया है ताकि यीशु मसीह के इस लहूलुहान सुसमाचार का प्रचार करे, इसे प्रदान करे प्रभु। प्रभु उनके पुत्र जूनियर को आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगा करेंगे और उसे मजबूत बनाए रखेंगे प्रभु। वो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए उनका सहारा है कि रुमाल को रखें। हालांकि वे बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, वे अब और अधिक कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वे अस्पताल से घर घर में जाते हैं, बीमारों पर रुमालों को रखते हैं। परमेश्वर आप इसका सम्मान करेंगे, मैं जानता हूँ आप करेंगे। उन्हें आशीष दे और उन्हें और अधिक दिनों के लिए शक्ति प्रदान करे पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको आशीष दे, ऐसा ही होगा भाई किड, ऐसा ही होगा। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। जी हाँ, जिसके लिए हमने फोन पर प्रार्थना की थी, एक पुरुष और महिला जो 80 वर्ष की आयु के हैं और बिता चुके हैं, वे बाहर कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और पुलपिट में नहीं खड़े हो सकते। इस समय इस तरह से प्रचार करने के लिए बहुत बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे भेजकर और प्रार्थना के कपड़ों के पैकेट को लेंगे और उन कपड़ों को बीमारों और पीड़ितों के पास भेजते हैं, उन्हें अस्पतालों में ले जाते हैं और इस तरह की हर एक चीज करते हैं। इसे उन पर रखने के लिए वे अब और बाहर नहीं निकल सकते हैं और इस तरह से सेवकाई की सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं जितनी अच्छी तरह से वे कर सकते हैं। इससे हम युवा लोगों को अपने आप में शर्म को महसूस कराना चाहिए, यह ठीक बात है। मसीह के लिए कुछ तो करना है। याद रखें, यह बुजुर्ग व्यक्ति जो यहाँ पर है, बाइक किड, मेरे जन्म से पहले सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, यह ठीक बात है। वहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक सासी बूढ़ा योद्धा, और यहाँ बुजुर्ग, आप इतने वर्ष के हैं, बाइक किड 81 वर्ष के, अब भी परमेश्वर के राज्य के लिए जा रहे हैं, पुलपिट में खड़े होने के लिए बहुत बूढ़े हैं और इस तरह के एक संदेश को देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अस्पताल जाते हैं, अस्पताल के पलंग के पास जाएंगे जहां एक लड़का जो उसे कार में यहां वहां ले जाता है और वे चल नहीं सकते, इसलिए बस उसे एक कार में ले जाते हैं और उन्हें उस स्थान पर ले जाते हैं जहां वे दो जन बूढ़े पति और पत्नी वहां जाकर और बीमारों पर एक रुमाल को रखते हैं। उनका एक प्रियजन था जो उस दिन मर गया था, एक लड़की, वे बस मुझे इसके बारे में बता रहे थे। हमने उनके लिए प्रार्थना की, पोती थी, जाकर और रखा, बच्ची अब उठकर खड़ी है, परमेश्वर की स्तुति हो। भाई किड, उन्होंने मुझे यहाँ कुछ समय पहले बुलाया था, लगभग 2 वर्ष पहले। मैं सोचता हूँ ऐसा ही है कि उसे प्रोस्टेट में कैंसर था, लगभग 78 वर्ष की उम्र में या 80, लगभग 80 वर्ष की उम्र के आसपास वे प्रोस्टेट में कैंसर के साथ थे। डॉक्टर ने बस इसे वापस लिटा दिया, वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। हम जल्दी करने लगे, बिल्ली और मैंने बारी बारी से गाड़ी चलाई ताकि वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो था, और पवित्र आत्मा ने हमें उस सुबह जाने के लिए बताया। हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं जब तक हम ऐसा करने के लिए अगुवाई को महसूस नहीं करते, और पवित्र आत्मा ने कहा जाओ, और हम वहाँ से चले गए और उस बूढ़े व्यक्ति पर हाथों को रखे कि उसके लिए प्रार्थना करें, और डॉक्टर इसका कहीं भी निशान नहीं ढूंढ सकते। परमेश्वर की महिमा हो। ओह क्यों, हमारा स्थान मसीह यीशु में है जो सारी बीमारियों और शत्रु की सारी शक्तियों से बहुत ही ऊपर चढ़ गया। ओह क्या आप उस भाई के लिए खुश नहीं है?
Almost everywhere, whose hearts are all on flame, with this fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
कितने उनमें से एक हैं? अब अपने हाथ ऊपर उठाएं.
One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them.
अब जब हम इसे गुनगुनाते हैं, आइए अब हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें
one of them, one of them. I'm so glad of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen.
I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm
क्या मैं इस एक पद को फिर गा सकता हूँ?
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, ना ही सारे धरती के सुनहरे लाखों के लिए क्या मैं इस बहुमूल्य स्थान को छोड़ दूंगा? यद्यपि प्रलोभन देने वालों ने मुझे यकीन दिलाने का यत्न किया, लेकिन मैं परमेश्वर की छावनी में सुरक्षित हूँ, उसके प्रेम और अनुग्रह में आनंदित, और मैं हालेलुया के पक्ष में जी रहा हूँ। ओ प्रभु, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या आप नहीं हैं? क्या आप उनमें से एक होने के लिए खुश नहीं हैं? बस उनमें से एक, उन नम्र लोगों में से एक जिन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, नीचे आ गए, ना ही मूर्ति के सामने, एक जीवित परमेश्वर के सामने, ना ही किसी संगठन के सामने, और अपने नाम को पुस्तक में डालें, एक जीवित परमेश्वर के सामने, ना ही एक मध्य सिद्धांत का वर्णन करने के लिए, लेकिन वचन को आप में देहदारी होने देने के लिए। देखो, ऐसा ही है, और अपने आप को नम्र किया, और फिर उसमें से होते हुए उसने आपको ऊपर उठाया, ना ही घमंडी डींग मार होकर कहें मैं ये हूँ, वो हूँ, या कुछ और हूँ, लेकिन नम्रता पूर्वक मिठास में, और उसने मुझ जैसे एक अभागे को कैसे बचाया, और उसने भला इसे कैसे किया। इसी प्रकार से सच्चा मसीही महसूस करता है। क्या आप ये विश्वास नहीं करते? ओह, वो बहुत ही वास्तविक है।
He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Real, He's so real to me.
Is it going?
Real, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ. जी हाँ श्रीमान. ओह, मैं इस महान पुराने सुसमाचार के मार्ग के लिए बहुत ही आनंदित हूँ इस महिमा में पुराने सुसमाचार के मार्ग में रहते हुए. अब मित्रों, जब तक हम मसीह के सियासन पर फिर से नहीं मिलते, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझे याद रखना और परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे. मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे खेद है कि मैंने आपको यहाँ रोके रखा है. अब आपके लिए जिन्होंने रुमाल को यहाँ पर रखा है, मैंने अभी उन पर हाथ रखा है. जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यदि आपने मुझ पर ध्यान दिया, जैसे ही आत्मा मुझ पर आया, मैं बहुत से दर्शनों में नहीं गया क्योंकि मैं कमजोर हूँ, थका हुआ हूँ. आप जानते हैं, अब यहाँ लगभग 2 या 3 घंटे से हूँ प्रचार कर रहा हूँ, और मैंने अभी कुछ को पंक्ति में से लेना आरंभ किया, जिससे कि आप देखें कि परमेश्वर परमेश्वर है. देखा, असंभव, अविश्वसनीय, किंतु सत्य कि वे चीजें ना ढूंढी जा सकती. शैतान, अब याद रखें, आप में से हर एक के पास मसीह में सामर्थ्य है. आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास अधिकार है. आपका अधिकार, आप बस ऊंचे उठाए गए हैं, बहुत ऊपर. ना ही अपने आप को ऊपर उठाना, लेकिन मसीह ने आपको ऊपर उठाया है. जितना अधिक मसीह आपको ऊपर उठाता है, उतना अधिक आप नीचे होना चाहेंगे. देखो, आप बहुत ही नम्र महसूस करेंगे. तो फिर वह मुझ जैसे अभागे को कैसे बचाएगा? उसने ऐसा कैसे किया? लेकिन उसने इसे किया, और इसलिए मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ. आमीन. बहुत अच्छा.
The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious, precious name. Oh, how sweet. Oh, hover and jaw of heaven. Precious name. Oh, precious name. Isn't he wonderful?
Oh, how sweet. How sweet.
Oh, Father and joy of.
अब सुनना, इसे मत भूलना. आप समूह को गाएं, मुझे इसका पद गाने दो. देखा, मुझे नहीं पता कि मैं उस पद के बारे में सोच पाऊंगा या नहीं जो मैं इसके बारे में गाना चाहता हूं. यह अगली बात है. यीशु के नाम पर झुकते हुए, उसके चरणों में दंडवत करते हुए, स्वर्ग का राजाओं का राजा, हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है. देखा, यीशु के नाम को अपने साथ लें. हर एक फंदे से एक ढाल की नाई. जब आपके आसपास परीक्षाएं घेरे हुए हों, बस प्रार्थना में उस पवित्र नाम का उच्चारण करें. ऐसा ही है, उस हाथ को ऊपर उठाएं और ब्रेक लगाने की आवाज को सुनें. देखा, देखा.
Breathe that holy name in prayer, precious name. Oh, sweet. Oh, Father. Joy of heaven, precious name, oh precious name, oh how sweet,
oh sweet,
oh power, joy of heaven.
आइए हम इसे फिर से गाएं, हम सब एक साथ मिलकर. आप क्या कहते हैं? आइए हम बस उस पद को फिर से लें. इस पर यीशु के नाम को अपने साथ लें, हर एक फंदे से एक ढाल की नाई. आइए हम अब इसे अपनी आंखें बंद करके गाएं.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer. Precious name,
precious name.
Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, Father.
मैं नहीं, नहीं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मेरा गला थोड़ा सा कर्कश हो गया है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। आप समाप्त करना चाहते हैं? नहीं, यह ठीक है, आप ठीक आगे बढ़ें, यह ठीक है। भाई नेविल, अब आपके पास्टर,